आगे सबक देखिए भाई। وَأَصْلُ الْمُبْتَدَأِ أَيْ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ التَّقْدِيمُ عَلَى الْخَبَرِ لَفْظًا لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ ذَاتٌ وَالْخَبَرَ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِهَا وَالذَّاتُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى أَحْوَالِهَا وَمِنْ ثَمَّ أَيْ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُبْتَدَأِ التَّقْدِيمُ لَفْظًا جَازَ قَوْلُهُمْ فِي دَارِهِ زَيْدٌ مَعَ كَوْنِ الضَّمِيرِ عَائِدًا إِلَى زَيْدٍ الْمُتَأَخِّرِ لَفْظًا لِتَقَدُّمِهِ رُتْبَةً لِإِصَالَةِ التَّقْدِيمِ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے خبر کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے، اور پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ خبر تو کبھی کبھار جملہ بھی ہوتی ہے، اور آپ نے تو کیا فرمایا کہ خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے، تو اس کا جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ خبر کبھی کبھار جملہ ہوتی ہے تو وہ حقیقتاً تو اسم نہیں لیکن حکمن اسم ہے، یعنی وہ اسم کے حکم میں ہے، اور اسم کے حکم میں ہے بائی لحاظ کہ اس کو اسم کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے، جیسے زیدن ابوہ قائمن، یہ جو ابوہ قائمن یہ خبر ہے زیدن کی اور یہ قائم الاب کی تاویل میں ہے بھائی، تو گویا یوں کہا گیا زیدن قائم الابی کہ زید قائم الاب ہے بھائی۔ تو دیکھو جملے کی تعبیر مفرد کے ساتھ اسم کے ساتھ کر دی گئی، تو یہ حقیقتاً تو اسم نہیں لیکن تعویلاً دیکھو اسم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے المسند بھی آیا تھا بھائی، اور اس پر ہم نے طویل بحث کی تھی بھائی۔ تو یہاں دیکھو المسند بھی آیا متن میں کہ خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے اور مسند بھی ہی ہو، اور آگے صاحب جامی نے اس کی تفسیر کی ایما یو قعو بہ الاسناد، یعنی وہ اسم جس کے ذریعے اسناد کو واقع کیا جائے، جیسے دیکھو لفظ زید اکیلا ہے تو یہاں کوئی اسناد نہیں۔ پھر میں ایک اور لفظ قائمن لایا اور اس قائمن کے ذریعے میں نے اسناد کر دیا، یعنی اس کو زید کے ساتھ جوڑ دیا، زید پر قیام کا حکم لگا دیا، تو کلام کیا بن گیا زیدن قائمن۔ تو دیکھو قائمن کے ذریعے اسناد کیا گیا، یہ ہے ما یوقع بہ الاسناد، وہ اسم جس کے ذریعے اسناد کیا گیا۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ متن میں تو آیا المسند بہ، تو صاحب جامی نے اس کی تفسیر ما یوقع بہ الاسناد کے ساتھ کیوں کی، تو اشکال یہاں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ المسند یہ تو خود متعدی ہے بھائی، تو اسی کے اندر ہوا ضمیر نائب الفاعل کی موجود ہے، تو پھر آگے اس کے ساتھ بہی کو کیوں ذکر کیا گیا، یہ بہی تو متعدی بنانے کے لیے لاتے ہیں، اور المسند جب خود متعدی ہے تو بہی کے ذریعے اس کو متعدی کرنے کی کوئی حاجت نہیں، تو یہ بہی تو زائد ہے بیکار ہے بھائی۔ تو بعض شارحین نے پھر اس کا جواب دیا کہ المسند بہی کے اندر تضمین ہے بھائی، تضمین، تضمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی ملحوظ ہو اور آگے آنے والا صلہ یعنی حرف جر جو ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہو، تو اب اسناد کا صلہ تو بہی نہیں آتا، لہذا معلوم ہوا اس کے اندر وقع یقع کا معنی ملحوظ ہے، اور وقع یقع تو لازم ہے، اس کے لیے تو مفعول نہیں آتا، تو اس کو پھر بہی کے ذریعے یعنی با کے ذریعے متعدی کرتے ہیں۔ تو المسند بہی کے اندر معلوم ہوا کہ یقع کا معنی ملحوظ ہے اور یہ بہی اس یقع پر دلالت کر رہا ہے، اور میں نے بتایا تھا تضمین کے اندر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ذکر تو المسند ہے اور معنی یقع کا ملحوظ ہے اس کے اندر، یعنی مسند کا اپنا معنی ہے ہی نہیں، نہیں پھر تو یہ مجاز بن جائے گا بھائی کہ ایک فعل دوسرے فعل کے معنی میں ہے، تو یہ مجاز نہیں ہے بلکہ مسند یعنی اسناد کا اپنا معنی بھی ملحوظ ہے اور یقع کا معنی بھی یہاں ملحوظ ہے بھائی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی لیے صاحب جامی نے ای ما یوقع بہ الاسناد کے ساتھ اس کی تفسیر کی، یعنی یوقع کو نکال کر بتلا دیا کہ المسند کے اندر یوقع فعل کا معنی ملحوظ ہے۔ लेकिन मैंने बताया कि यह तकरीर दुरुस्त नहीं भाई, इसलिए क्योंकि जब जहां तजमीन हो तो वहां पर या तो आतफ के जरिए उसकी तफसीर की जाती है, दूसरे फेल को भी आतफ के साथ जिक्र कर दिया जाता है, या दो फेलों में से एक को उसी तरह रखते हैं और एक को हाल बनाकर ले आते हैं, दोनों को जिक्र करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर यह कहा जाए कि मुसनद के अंदर यूकाऊ का माना मलहूस है और यूकाऊ तो बिही के जरिए मुतअद्दी होता है, हालांकि यहां पर तो अल इस्नाद जो है वो नाइबुल फाइल बन रहा है यूकाऊ का, मा यूकाऊ बिहिल इस्नादु, मा वो चीज या वो इसम यूकाऊ बिहिल इस्नादु जिसके जरिए इस्नाद को वाकिया किया जाए, तो यूकाऊ का तो नाइबुल फाइल अल इस्नाद आ रहा है, बिही तो फिर भी उसके लिए नाइबुल फाइल नहीं बना। हालांकि जिन्होंने कहा कि यहां तजमीन है उनके नजदीक ये बिही क्यों लाए, यूकाऊ को मुतअद्दी करने के लिए, क्योंकि यूकाऊ तो फेले लाजिम था, अब फेले मजहूल बनाया तो फेले मजहूल के लिए क्या करते हैं, मफूल बिही को नाइबुल फाइल बनाते हैं, और वकाया यकाऊ का तो मफूल बिही आता ही नहीं, तो फिर बिही के जरिए मुतअद्दी कर दिया गया। तो ये जो बिही में हाज अमीर है ये मफूल बिही गैर सरीह हुई, क्या हुई, गैर सरीह हुई, और फिर यही क्या बन जाएगी, नाइबुल फाइल बन जाएगी जब फेल को मजहूल बनाएंगे, जाराबा जैदुन अमरन, या अमरन क्या है, मफूल बिही, फिर जब हम जुरीबा बनाएंगे तो यही अमरन क्या बन जाएगा, नाइबुल फाइल बन जाएगा, ऐ जुरीबा अमरुन, और वकाए यकाऊ का तो मफूल आता नहीं, तो इसको जब फेले मजहूल बनाएंगे तो नाई फाइल किसको बनाए, तो लिहाजा इसको किसके जरिए मुतअद्दी कर दिया, बिही के जरिए। और मैंने बताया जो हरूफ जारा जिन पर दाखिल होते हैं यानी वो जो मजरूर होता है वो भी दर असल मफूल बिही ही है, हां अलबत्ता वो मफूल बिही गैर सरीह है, तो ये बिही की हाजमीर क्या हुई, मफूल बिही, फिर इसी को यूकाऊ के लिए क्या बना दिया गया, नाइबुल फाइल बना दिया गया। लेकिन अगर ये तकरीर की जाए तो फिर अल इस्नाद लाने का क्या माना, मा यूकाऊ बिहिल इस्नादु, कि अल इस्नाद तो खुद नाइबुल फाइल बन रहा है यूकाऊ के लिए, तो फिर बिही लाने की क्या जरूरत है, बात समझ में आ रही है। तो लिहाजा ये तकरीर दुरुस्त नहीं कि यहां तजमीन है, बल्कि मैंने बतलाया कि साहिबे जामी यहां से यह बतलाना चाहते हैं कि अल मुसनद के अंदर जमीर मौजूद है लेकिन वो जमीर इसी के मस्तर को राजे है। मैंने बताया था बाज औकात एक फेल जिक्र होता है और उसके फाइल या नाई फाइल का पता नहीं चलता, तो फिर उसके अंदर जो जमीर है उसी के मस्तर की तरफ राजे कर देते हैं। तो लिहाजा तो अल मुसनद जब बनाया गया तो इसके अंदर जमीर किसको राजे कर दी, इसके मस्तर को, और अलिफ्लाम यहां अल मुसनद पर अलिफ्लाम किस माना में है, अल्लजी के माना में है, क्योंकि वो अलिफ्लाम जो इसमें फाइल या इसमें मफूल के सीगों पर दाखिल हो बमाना अल्लजी होता है। तो अल मुसनद किस माना में हुआ, अल्लजी युसनदु, अल्लजी युसनदु, और इस युसनदु के अंदर जमीर किसको राजे कर दी, इसी के मस्दर को राजे कर दी, अल्लजी युसनदुल इस्नादु, युसनदुल इस्नादु। और मैंने बताया था ये असनद युसनदु फेल इसके लिए मफूल आता है, उसके लिए मफूल आता है, तो जब आपने अल्लदी युसनदु के अंदर जमीर इसी के मस्तर को राजे कर दी तो मफूल तो अभी भी बाकी है, उसको तो आपने फेल के साथ जोड़ा ही नहीं, लेकिन अब वो नहीं जुड़ सकता क्योंकि क्योंकि आपने जमीर किसको राजे कर दी है, मस्तर को, तो फिर उसको जोड़ने के लिए यानी यूं कहें ये जो युसनदु फेल मजहूल है इसके अंदर जो जमीर है नाई फाइल वो किसको राजे कर दी, मस्तर को, और वो मफूल को अभी भी इससे जोड़ना है और अब उसको आप बराहे रास्त नहीं जोड़ सकते, तो फिर बा का सहारा लिया गया यानी इस बा को तादिया के लिए लाया गया, मुतअद्दी करने के लिए लाया गया। तो साहिबे जामी यही बतलाना चाहते हैं तो कि अल्लदी युसनदु के अंदर हुआ जमीर इसके मस्तर को राजे है और फिर बिही के जरिए आगे इसके मफूल बिही को भी जोड़ दिया गया। बात समझ भी आई कि नहीं, फिर सुनो, देखो मसलन, देखो जराबा से हम मिसाल बना लेते हैं, जराबा जैदुन अमरन, ये अमरन क्या है, मफूल भी ही है। अब मैं इसको फिले मजहूल बनाता हूं तो फाइल जैदुन को हजफ कर लूंगा और क्या कहूंगा, जुरीबा अमरुन। लेकिन फर्ज करो मैं अमरुन को मैं नाइबुल फाइल नहीं बनाता बल्कि जुरीबा के अंदर हुआ जमीर मैं इसी के मस्तर को लौटा देता हूं, जुरीबा जरबो, जुरीबा जरबो। अब आगे जो मफूल बिही अमर था वो तो अभी भी मौजूद है, वो तो अभी भी नहीं जोड़ा आपने फेल के साथ, और अब आप उसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसने नायबुल फाइल बनना था, लेकिन जमीर आपने किसको लौटा दी, इसी के मस्तर को। अब उसको भी हम साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब उसके जोड़ने की कोई सूरत नहीं, वो जमीर इसके लिए थी लेकिन आपने किसके लिए इस्तेमाल कर ली, मस्दर के लिए, तो अब उसको भी जोड़ना है। तो अब बा के जरिए मुतादी करेंगे, बा लेकर आएंगे तो कैसे कहेंगे, तो कैसे कहेंगे जूरी बस जरबू, जमीर इसी के मस्तर को राजे है, जूरी बस जरबू और बा के जरिए मुतादी किया किसकी तरफ, आमर की तरफ, जूरी बस जरबू भी आमरीन, और जूरी बस जरब का तर्जमा किसके साथ करेंगे, यू का उस जरबू, जैसे यहां आया यू का उस जरबू भी आमरीन, बात समझ में आ गई, तो यू का उस जरबू भी आमरीन। ये वैसे मिसाल समझाने के लिए मैंने बताया कि इस तरह यहां भी यहां भी इसी तरह हुआ है, आई मा यू का बिहिल इसनाद, यू कौल इसनाद से क्या बताया कि इसके अंदर जमीर इसी के मस्दर को राजे, तो फिर माना कैसे करेंगे, मैंने बताया था उस्तुगनिया अनहु, फिर जमीर किसको राजे की, इस्तगना को, तो कलाम क्या बन गया, उस्तुगनियल इस्तगना, उस्तुगनियल, और फिर तर्जमा कैसे करते हैं, यकउल इस्तगना, तो यहां पर भी इसी तरह हुआ, अल मुस्नदुल इस्नाद, ये यूं कहो अलिफ लाम को अल्लजी के माना में ले लो, अल्लजी युस्नदुल इस्नाद, अल्लजी युस्नदुल इस्नाद, और फिर माना कैसे करेंगे, यू काउ, मैंने बताया यकाऊ के साथ नहीं, क्योंकि इसनाद वाके होता नहीं है, इसनाद को वाके किया जाता है, लिहाजा यहां यू काउ लाएंगे, यानी औका यू के बाबे इफाल से लेकर आएंगे, और क्योंकि वो फेले मुतादी है भाई, बात समझ में आ गई, तो अयू काउल इसनाद, और इसके साथ फिर बिही को जोड़ दिया क्योंकि वो मफूल लहू को भी साथ जोड़ना है, बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ ये बा जायद और बेकार नहीं है, ये इसको मुतादी बनाने के लिए है, क्योंकि अलमुस्नद के अंदर हुआ जमीर इसी के मस्तर को राजे है, वो नायबुल फाइल है, और असल में जो मफूल था उसको अभी भी जोड़ना है, तो किसके जरिए जोड़ेंगे, बा के जरिए जोड़ेंगे, मालूम हुआ ये बा जायद और बेकार नहीं है भाई। तो कहते हैं अल मुस्नद बिही अय मा यूकउ बिहिल इसनाद, यानी वो इसम जिसके जरिए इसनाद वाकिया किया जाए, और मैंने बताया था ये बा इस्तेआनत के लिए भी आप बना सकते हैं और सबबियत के लिए भी, अगर इस्तेआनत के लिए हो तो तर्जमा यूं होगा अय मा यूकउ बिहिल इसनाद, वो इसम के उसकी मदद से इसनाद वाकिया किया जाए, या अगर बा को सबबिया बनाए तो मा यूकउ बिहिल इसनाद, वो इसम जिसके जरिए से जिसके सबब से इसनाद वाके किया जाए। और आगे खबर की तारीफ में कैद आई थी अल मुगायरुल सिफतिल मस्कूरती, कि वो खबर क्या हो, उस सिफत मस्कूरा से मुगायर हो, वो जो सिफत जिक्र हुई थी मुब्तदा की किस्म सानी के अंदर भाई, उससे मुगायर हो, उससे अलग हो। तो साहिब जामी ने आपको बतलाया था कि इस कैद के बगैर भी तारीख पूरी हो सकती है, अगर आप अल मुस्नदु बिही से क्या मुराद ले लें, अल मुस्नदु बिही इलल मुबतदा मुराद ले लें, खबर वो इसम है जो अवामिल लफ्जिया से खाली हो और मुस्नद बिही हो, के मुस्नद बिही से आप क्या मुराद ले लें, अल मुस्नदु बिही इलल मुबतदा मुराद ले लें, यानी इलल मुबतदा की कैद यहां मलहूज रख लें, तो खबर वो इसम है जो खाली हो अवामिल लफ्जिया से और मुस्नद भी ही हो मुबतदा की तरफ। इस कैद के जरिए मुबतदा की किस्म अव्वल भी निकल गई, मुबतदा की किस्म सानी भी निकल गई, क्या कहा, जो मुस्नद भी ही हो किसकी तरफ, मुबतदा की तरफ, तो मुबतदा की किस्म अव्वल वो तो मुस्नद इलैह है, वो भी निकल गई, और मुबतदा की किस्म सानी मुस्नद भी ही है, लेकिन वो मुस्नद भी ही इलल मुबतदा नहीं है, बल्कि वो मुस्नद भी ही इला इलल फाइल है, वो अपने फाइल या नाई फाइल की तरफ मुस्नद बिही है, बात समझ में आ गई। तो दोनों इस मुस्नद बिही की कैद के जरिए निकल जाएंगे अगर आप अल मुस्नद बिही से अल मुस्नद बिही इलल मुब्तदा मुराद ले लें। या दूसरी सूरत यह है कि अल मुस्नद बिही के अंदर यूं कहें कि यह बा इला के माना में है, यानी असल में था अल मुस्नद इलैही, फिर इला को ताबीर किससे कर दिया साहिब काफिया ने, बा से, तो अल मुस्नद इलैही था, और ये इलैही की हा जमीर राजे है मुबतदा को, और मैंने बताया हरूफ जारा एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, तो गोया यहां पर भी बा किस माना में है, इला के माना में, तो असल में यूं है अल मुस्नद इलैही, खबर वो इसम है जो खाली हो अवामिल लफ्जिया से, अल मुस्नदु इलैही, और जिसका इस्नाद किया गया हो इलैही, किसकी तरफ? मुबतदा की तरफ। किसकी तरफ? मुबतदा की तरफ जिसका इस्नाद किया गया हो। मालूम हुआ ये बिही जायद नहीं, ये बिही बमाने इलैही के है भाई। और इस सूरत में भी देखो मुबतदा की दोनों किस्में निकल गई। खबर वो है जो मुस्नद हो किसकी तरफ? मुबतदा की तरफ। जब मुस्नद है तो मुबतदा की किस्म अव्वल भी निकल गई क्योंकि वो तो मुस्नद भी ही है ही नहीं, वो तो मुस्नद इलैह है। और दूसरी किस्म भी निकल गई क्योंकि वो भी मुस्नद इलैल मुबतदा नहीं है, वो तो खुद मुबतदा है, वो तो मुस्नद इलैल फाइल है भाई, लिहाजा वो भी निकल गई। तो अल मुस्नद बिही असल में क्या था? अल मुस्नद इलैही था, और इलैही की हा जमीर मुबतदा को राजे थी। लेकिन सवाल कि फिर साहिब काफिया ने इला को बा के साथ क्यों बदल दिया, मुस्नद इलैह के बजाय मुस्नद बिही क्यों कहा? कहते हैं ताकि इश्तेबा वाके ना हो, क्योंकि मुबतदा की किस्म अव्वल में भी मुस्नद इलैह आया था, यहां भी मुस्नद इलैह आ जाता तो दोनों में इश्तेबा होता, लिहाजा इस सानी मुस्नद इलैह को उन्होंने किससे बदल दिया? मुस्नद बिही से बदल दिया। तो कहते हैं इस सूरत में चाहे आप इलल मुबतदा की कैद मलहूज मान लें, यानी वो मुराद ले लें अल मुस्नद बिही इलल मुबतदा, या चाहे आप इस बा को इला के माना में ले लें, दोनों सूरतों में मुबतदा की किस्म अव्वल भी निकल जाती है इस कैद के जरिए और मुबतदा की किस्म सानी भी निकल जाती है। तो फिर आगे अल मुगायिरुल सिफतिल मज़कूरा, ये कैद लाने की कोई हाजत नहीं। हां ये ताकीद बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ताकीद, यानी वो बात जो पहले जिमनन मालूम हो रही थी उसी को सराहतन भी जिक्र कर दिया। तो एक चीज को जब दोबारा जिक्र किया जाए तो वो क्या कहलाती है? ताकीद कहलाती है। तो मुस्नद बिही से ही पता चल गया था कि मुबतदा की किस्म सानी इससे निकल चुकी है, लेकिन आगे फिर सराहतन भी कह दिया अल मुगायिरु लिसिफतिल मस्कूरति, की खबर जो है वो सिफत मस्कूरा से मुगायर हो। तो वो जो जिमनन मालूम हुआ था उसको सराहतन भी जिक्र कर दिया, बात और ज्यादा वाजह हो गई। और ये ताकीद है उसी के लिए भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। और फिर उन्होंने आखिर में बताया था कि मुबतदा और खबर दोनों के अंदर आमिल इब्तिदा है, और इब्तिदा कहते हैं इसम का खाली होना अवामिल लफ्जिया से, और इस तौर पर कि इसका इस्नाद किसी की तरफ किया जाए या इसकी तरफ किसी का इस्नाद किया जाए। तो अब इसमें मुबतदा की दोनों किस्में भी दाखिल हो गई और खबर भी, ये तीनों जो हैं अवामिल लफ्जिया से खाली हैं, और इन तीनों में से हर एक या तो मुस्नद है या मुस्नद इलैह है भाई, बाकी और किसी जगह ये इब्तिदा आमिल नहीं। जबकि बास दूसरे उलमा फरमाते हैं, उनका मजहब अलग है, उनमें से बास फरमाते हैं कि इब्तिदा सिर्फ मुबतदा में आमिल है और खबर के अंदर फिर खुद मुबतदा आमिल है, उस खबर के अंदर इब्तिदा आमिल नहीं। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि इब्तिदा किसी में भी नहीं आमिल, मुबतदा के अंदर खबर आमिल है और खबर के अंदर मुबतदा आमिल है, दोनों एक दूसरे में आमिल हैं भाई। तो कहते हैं अगर ये जो दूसरों के कौल को लिया जाए, दूसरों के कौल को, चाहे जो सिर्फ इब्तिदा को मुबतदा में आमिल मानते हैं या चाहे दूसरा कौल लिया जाए कि दोनों एक दूसरे में आमिल हैं, दोनों कौलों की बिना पर साहिबे काफिया की तारीफ में यह दाखिल नहीं, क्योंकि साहिबे काफिया ने तो बतला दिया कि मुबतदा और खबर दोनों के अंदर आमिल लफ्जी नहीं होता। मालूम हुआ दोनों में आमिल इब्तिदा है। तो ये बिसरीन का यही मजहब है और साहिबे काफिया ने भी इसको तरजीह दी है भाई। अब देखिए भाई आज का सबक कहते हैं वह असलुल मुबतदा ऐ मा यंबगी अन यकून अल मुबतदा अलैहि इदा लम यमना मानिअ। वह असलुल मुबतदा, पहले मतन मतन देख लें। कहते हैं वह असलुल मुबतदा तकदीम, और मुबतदा में असल जो है वो तकदीम है भाई, मुबतदा में असल तकदीम है। याद रखो मुबतदा के अंदर असल यह है कि वो मुकदम होना चाहिए, और खबर के अंदर असल यह है कि वह मुअख्खर होनी चाहिए भाई, मुअख्खर होनी चाहिए। आसान लफ्जों में मैंने आपको बतलाया था मुबतदा उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए, और खबर वो जो बात की जाए उसको खबर कहते हैं। तो जिसके बारे में बात की जाए पहले उसको जिक्र करना चाहिए और फिर उसकी खबर को जिक्र करना चाहिए भाई। तो लिहाजा मुबतदा में असल क्या है कि वह मुकदम होना चाहिए, और खबर में असल यह है कि वह मुअख्खर होनी चाहिए। और नीज याद रखना मुब्तदा में असल यह है कि वह मारिफा होना चाहिए और खबर में असल यह है कि वह नकेरा होनी चाहिए। तो कहते हैं वह असलुल मुब्तदा तकदीम, और मुब्तदा के अंदर असल जो है तकदीम है, यानी उसको मुकदम करना। वह मीन समाजा फी दारी ही जैदुन, और इसी वजह से फी दारी ही जैदुन जायज है, यह वाला कौल जायज है भाई। वमतना साहिबुहा फिदार, और ये कौल मुमतने है यानी जायज नहीं है। साहिबुहा फिदार भाई, फिदार ही जैदुन ये कहना जायज है और साहिबुहा फिदार कहना जायज नहीं भाई। फिदार ही जैदुन ये कहना जायज है। अब इसकी तरकीब समझ लें भाई, देखो फीदारी ही जैदुन, इसके अंदर ये फीदारी ही ये खबर मुकदम है क्योंकि जार मजरूर है, और मैंने आपको बतलाया था कि जार मजरूर जब भी कलाम में आए तो वो कभी भी मुब्तदा नहीं बनते, वो हमेशा खबर बनते हैं। तो फीदारी ही ये खबर मुकदम है और जैदुन मुब्तदा मुअख्खर है भाई। अब देखो फीदारी ही के अंदर हाज अमीर है खबर के अंदर, और ये लौट रही है जैद की तरफ, किसकी तरफ, जैद की तरफ। तो इस सूरत में ये इजमार कबला जिक्र लाजिम आ रहा है, जमीर पहले आ गई और मर्जे बाद में, तो ये लफ्जों के एतबार से इजमार कबला जिक्र है। लफ्जों के अंदर हाज अमीर पहले है और जैद मुअख्खर है, लेकिन रुतबे के एतबार से जैद मुकद्दम है भाई फीदारी ही पर, इसलिए क्योंकि जैद मुब्तदा है और फीदारी ही खबर है, और मुब्तदा का रुतबा खबर पर मुकद्दम होता है। तो लिहाजा यहां फीदारी ही के अंदर जो हाज अमीर जिक्र की, इसमें इजमार कबला जिक्र लफजन तो लाजिम आया लेकिन रुतबतन लाजिम नहीं आया, और यह जायज है। अगर इजमार कबला जिक्र लफजन भी हो और रुतबतन भी हो वो तो जायज नहीं, लेकिन सिर्फ लफजन हो तो फिर जायज है भाई। तो लिहाजा ये इजमार कबला जिक्र लफजन है भाई, बात समझ में आ गई। वमतना साहिबुहा फिदार, और ये कौल मुमतनेअ है साहिबुहा फिदार, ये तरकीब जायज नहीं। वजह यह कि इस तरकीब में देखो साहिबुहा यह है मुबतदा और फिदार यह है खबर, और साहिबुहा के अंदर हाज अमीर है और यह हाज अमीर अदार को राज है जो खबर के अंदर आ रहा है, तो जमीर पहले आ गई और मर्जिअ बाद में, और लफ्जों के एतबार से भी यह इजमार कबला जिक्र है, लफ्जों में भी जमीर पहले और अद्दार मुअख्खर, और रुतबे के एतबार से भी अद्दार मुअख्खर है क्योंकि अद्दार खबर के अंदर आ रहा है और खबर रुतबे के एतबार से मुअख्खर होती है। तो साहिबुहा के अंदर यह जो हाज अमीर आई इसके अंदर इजमार कबला जिक्र लफजन भी है और रुतबतन भी है, और यह जायज नहीं है। तो कहते हैं वमीन सम, और इसी वजह से जाजा जायज है ये कौल फीदार ही जैदुन, ये तो जायज है। वम तना साहिबुहा फिदार, और साहिबुहा फिदार मुमतनेअ है भाई। कोई आपसे अगर कहे साहिबुहा फिदार की तरकीब कीजिए, याद रखिए आप कहेंगे कि ये कलाम जायज ही नहीं है, अरब के कवानीन और जवाबित के मुताबिक जायज ही नहीं, लिहाजा इसकी तरकीब भी नहीं हो सकती भाई, क्योंकि इसमें इजमार कबला जिक्र है लफजन भी और रुतबतन भी। अब शरा के साथ देखिए, कहते हैं वह असलुल मुब्तदाई अयमा यम्बगी अय्यकून अल मुब्तदाउ अलैही इदा लम यमना मानिअ, यहां से असल का माना बयान कर रहे हैं। असल के कई मानी आते हैं, असल का माना बुनियाद भी, जैसे देखो मकान तामीर किया जाता है तो पहले बुनियाद बनाई जाती है मकान की, बुनियाद मजबूत होगी तो मकान भी मजबूत होगा, बुनियाद कमजोर होगी तो मकान भी कमजोर होगा। इसी तरह देखो दरख्त जो है वो जड़ों और तने पर कायम होता है, तो जड़ें और तना जो है ये दरख्त के लिए असल है भाई, बात समझ में आ गई। और इसी तरह असल कानून को भी कहते हैं, तो असल के कई मानी आते हैं। यहां क्या माना है असल का, साहिबे जामी बतला रहे हैं यहां असल का माना है मुनासिब। असलुल मुब्तदाई यानी मुब्तदा के मुनासिब यह है कि इसको मुकद्दम करना चाहिए, ना तो असल यहां बुनियाद के माना में है और ना कानून के माना में, बल्कि यह मुनासिब के माना में है। तो कहते हैं वह असलुल मुब्तदाई, मुब्तदा की असल, ऐ मा यम्बगी, देखा ये असल का माना कर रहे हैं, ऐ मा यम्बगी अन यकून अल मुब्तदाउ अलैही, यानी वो हालत के मुनासिब है कि मुब्तदा उस पर हो, इज़ा लम यमना मानेउन, जब कोई मानेअ ना हो, जब कोई मानेअ ना हो तो वो हालत जो मुब्तदा के मुनासिब है उस पर मुब्तदा हो, अत तकदीम, वो उसको मुकद्दम करना है कि वो मुकद्दम होना चाहिए भाई। हां अगर कोई मानेअ आ जाए फिर अलग बात है, फिर मुअख्खर भी हो सकता है, जैसे फिद्दारी रजुलुन, फिद्दारी रजुलुन, देखो फिदार ये खबर मुकद्दम है और रजुलुन मुब्तदा मुअख्खर है, लेकिन यहां पर फिदार को मुकद्दम करना वाजिब है, तवज्जो है, इसलिए क्योंकि रजुलुन नकेरा है, नकेरा है और नकेरा महज़ा मुब्तदा नहीं बनता, क्योंकि मुब्तदा या तो मारिफा होना चाहिए या उसमें तख्सीस होनी चाहिए, तो यहां पर फिदार को मुकद्दम करेंगे, इससे रजुलुन के अंदर तख्सीस आ जाएगी। तो अब यहां पर देखो मुब्तदा के अंदर असल तो यह है उसको मुकद्दम होना चाहिए, लेकिन फिदारी रजुलुन के अंदर रजुलुन मुब्तदा है और इसको मुकद्दम करना जायज ही नहीं भाई, इसको मुअख्खर ही रखेंगे। इसीलिए साहिब जामी ने कहा आई मा यम बगी अन यकून अल मुब्तदा अलैही, यानी वो हालत के मुनासिब यह है कि मुब्तदा उस हालत पर हो, इजा लम यम ना मानेउन, जब कोई मानेअ ना हो, जबकि फिदारी रजुलुन में मानेअ मौजूद है, क्या मानेअ, कि वहां रजुलुन नकेरा है और मुब्तदा में असल क्या है, मारिफा होना चाहिए, तो रजुलुन मुब्तदा बन ही नहीं सकता जब तक फिदार को उस पर मुकद्दम नहीं करेंगे, तो मुब्तदा में असल क्या, मुकद्दम होना चाहिए, लेकिन फिदारी रजुलुन में मुकद्दम नहीं कर सकते क्योंकि मानेअ आ गया, क्योंकि अगर इसको मुकद्दम करेंगे फिर तो इसको मुब्तदा बनना ही सही नहीं है, इसीलिए कहा इदा लम यमना मानेउन, जब कोई मानेअ ना हो भाई तो मुब्तदा के अंदर असल जो है अत तकदीम, मुकद्दम करना है, अलल खबरी, किस पर, खबर पर, लफ्जन बैतबार लफ्जों के, कि मुब्तदा में असल यह है कि उसको लफ्जों में खबर पर मुकद्दम किया जाए भाई, भाई रुतबे के एतबार से तो मुब्तदा है ही मुकद्दम, क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है, तो जिसके बारे में बात की जाए वो पहले और जो बात की जाए वो बाद में होनी चाहिए, तो लिहाजा रुतबे के एतबार से तो मुब्तदा मुकद्दम ही है, लफ्जों के अंदर भी उसको खबर पर मुकद्दम होना चाहिए, ये मुनासिब है भाई, ये माना है अत तकदीम अलल खबरी, खबर पर मुकद्दम करना, लफ्जन बैतबार लफ्जों के, लिअन्नल मुब्तदा अज़ातुन, इसलिए क्योंकि मुब्तदा जात है, वल खबर हालुम मिन अहवालिहा, और खबर हाल है उसके अहवाल में से, वज़ातु मुकद्दमतुन अला अहवालिहा, और जात मुकद्दम होती है अपने अहवाल पर। भाई देखिए एक है जात और एक है उसके अहवाल, अहवाल पहले जात का तसव्वुर आएगा फिर उसके अहवाल का तसव्वुर आएगा, ये नहीं कि पहले अहवाल का तसव्वुर आ जाए और फिर जात का तसव्वुर आए, नहीं नहीं, तो पहले किसका तसव्वुर आएगा, जात का और फिर उसके अहवाल का। मसलन मैंने आपसे कहा जैद सखी है तो पहले आपके जहन में जैद का तसव्वुर आया और फिर उसकी हालत यानी सखावत का भी तसव्वुर आया कि वो सखी है भाई। देखो इन्होंने कहा ली अन्नल मुब्तदा जातुन, क्योंकि मुब्तदा जात है भाई, जात याद रखो, जात का एक माना आता है कि वो चीज जिसका अपना अलग वजूद हो, एक होती है जात एक है सिफत, जात और एक सिफत, जात वो है जिसका अपना अलग वजूद हो और सिफत वो है जिसका अपना अलग वजूद ना हो, जैसे जैद, जैद का अपना अलग खारिज में वजूद है और सखावत उसकी सिफत है, सखावत का अपना अलग कोई वजूद नहीं, ये जैद है तो जैद की सखावत भी है, जैद नहीं तो जैद की सखावत भी नहीं है, यह जैसे सफेदी, सफेदी का अपना अलग कोई वजूद नहीं, कोई चीज है या कपड़ा है या कागज है तो वो जात है और सफेदी उसकी सिफत है, तो जात से आप ये वाला माना ना समझ लेना कि जात उसे कहते हैं जिसका अपना अलग वजूद हो, नहीं, यहां जात का वो माना नहीं, ये जो इन्होंने कहा ना लिअन्नल मुब्तदा अजातुन, क्योंकि मुब्तदा जात है, बल्कि यहां जात का माना है कि वो चीज जिसके बारे में खबर दी जा सके उसको जात कहेंगे, वो चीज जिसके बारे में खबर दी जा सके उसको जात कहेंगे, जैसे देखो कोई शख्स कहता है अल इल्म हसनुन, इल्म अच्छी चीज है, अब देखो मुब्तदा क्या, अल इल्म, और खबर क्या, हसनुन, अल इल्म हसनुन, इलम अच्छी चीज है, इलम को मुब्तदा बनाया। और इलम, इलम का तो अपना अलग कोई वजूद नहीं, इलम का माना तो है जानना, तवज्जो है, इलम का माना क्या है जानना। देखो इसको, इसका तो अपना अलग कोई वजूद नहीं, तो आपके जहन में इश्काल आएगा कि हमने तो जामी में पढ़ा था कि मुब्तदा जात होती है, जात तो किसे कहते हैं जिसका अपना अलग वजूद होता है, और इलम का तो अपना अलग कोई वजूद नहीं। मैंने बताया कि जात का यह माना यहां नहीं, जात का माना यह है जिसके बारे में खबर दी जा सके, जो भी चीज हो जिसके बारे में खबर दी जा सके वो जात है। और अल इलम बेशक सिफत है, लेकिन इसके बारे में खबर दी जा सकती है या नहीं, बल्कि खबर हम दे रहे हैं, अल इल्म हसन, इल्म क्या है, अच्छी चीज है, देखो इसके बारे में हसन होने की हम खबर दे रहे हैं। तो जो भी ऐसी चीज है, चाहे उसका अपना अलग खारिज में वजूद हो या ना हो, लेकिन उसके बारे में खबर दी जा सके, उसको क्या कहते हैं, उसको जात कहते हैं भाई। तो कहते हैं लिअन्नल मुब्तदा आजातुन, इसलिए क्योंकि मुब्तदा जात है, वल खबर हालुम मिन अहवालिहा, और खबर जो है उसके अहवाल में से एक हाल है, वज़ातु मुकद्दमतुन अला अहवालिहा, और जात मुकद्दम होती है अपने अहवाल पर। भाई याद रखो, पहले हमारे जहन में जात का तस्वूर आता है और फिर उसकी हालत का तस्वूर आता है। मसलन जैद है और एक उसकी सखावत है, पहले हमारे जहन में जैद का तस्वूर आएगा और फिर उसकी हालत और फिर उसकी सखावत का तस्वूर आएगा। इसी तरह अल इल्म हसनुन, पहले हमारे जहन में इलम का तस्वूर आएगा कि इलम का क्या माना है, जानना, और फिर उसके बाद उसके हसन होने का, उसकी हालत का तस्वूर आएगा। तो जात क्या होती है, मुकद्दम होती है किस पर, अपने अहवाल पर भाई। तो इन्होंने आपको बतलाया भाई कि मुब्तदा चूंकि जात है और खबर उसके अहवाल में से एक हाल है, और जात मुकद्दम होती है अहवाल पर, पहले जात का तस्वूर आता है और फिर उसके बाद अहवाल का तस्वूर किया जाता है भाई। तो फिर इस पर इश्काल होता है कि कामा जैदुन, कामा फेल और जैदुन उसका फाइल, कामा फेल देखो ये अपने फाइल की हालत बयान कर रहा है, जैसे मुब्तदा खबर में मुब्तदा है जात और खबर क्या है उसका हाल, तो इसी तरह जुमला फेलिया के अंदर फेल जो है वो हाल है और आगे फाइल क्या है, जात है। तो भाई जुमला फेलिया के अंदर तो हाल मुकद्दम है और जात मुअख्खर है। आपने दलील क्या जिक्र की कि चूंकि मुब्तदा जात है और खबर हाल है और जात मुकद्दम होती है हाल पर, तो फिर तो यह बात जुमला फेलिया के अंदर भी जारी होनी चाहिए, लेकिन जुमला फेलिया में फेल यानी हाल पहले आता है और जात यानी फाइल या नाई फाइल बाद में आता है। तो उसका जवाब देते हैं नहवी हजरात कि वहां पर एक आरिज पेश आ गया, एक मान्या पेश आ गया, और वह मान्या यह है कि फेल जो है वो आमिल होता है और जो फाइल या नाइब फाइल है वो मामूल होता है, और आमिल मुकद्दम हुआ करता है अपने मामूल पर, इसलिए वहां फेल को मुकद्दम किया गया, वरना होना यही चाहिए था कि पहले जात आनी चाहिए और उसके बाद सिफत। तो लिहाजा वहां फेल आमिल था इसलिए उसको मुकद्दम कर दिया गया और फाइल मामूल था उसको मुअख्खर कर दिया गया, जबकि मुब्तदा खबर में ऐसा नहीं है। तो लिहाजा मुब्तदा में असल जो है वो मुकद्दम होना और खबर में मुअख्खर होना है भाई। कहते वमिन सम्मा अय वमिन अजली अन्नल असल फिल मुब्तदाई, जी यहां सम्मा आया, याद रखो भाई ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। सम्मा मैंने बतलाया था कि सम्मा इसमें इशारा है, एक है सुम्मा सा के जम्मा के साथ, वो हर्फ आतफ है भाई, और एक है सम्मा सा के फतहा के साथ, याद रखो ये इसमें इशारा है मकाने बाईद के लिए, दूर की जगह के लिए, दूर की जगह के लिए, तो ये मकाने बाईद के लिए इसमें इशारा है, बमाने वो या बमाने वहां, बात समझ में आ रही, वो या वहां के माना में यह इस्तेमाल होता है। और फिर इसके साथ कभी गोलता भी जोड़ देते हैं और उस पर भी जबर पड़ते हैं, सम्मता तो कहीं पर आएगा वमीन सम्मता, और फिर यही गोलता जो है हालत वक्फ में हा से बदल जाती है वमीन सम्मह, वमीन सम्मह, और कभी कभार इसके साथ लंबी ता भी जोड़ देते हैं और उस पर भी जबर पड़ते हैं वमीन सम्मता, और कभी उसमें भी वक्फ करते हैं लेकिन उसमें फिर वो हा से नहीं बदलेगी क्योंकि वो लंबी ता है, तो कैसे पढ़ेंगे वमीन सम्मत, वमीन सम्मत, तरीका समझ में आया, तो हालत वक्फ में फिर ता को साकिन कर देंगे। और फिर याद रखना कभी दरमियाने इबारत में भी सम्मह आ जाता है, दरमियाने इबारत में भी सम्मह आ जाएगा, हा होगी भाई, तो आपके जहन में इश्काल आएगा भाई कि हा तो इसके साथ नहीं जोड़ते, इसके साथ तो क्या जोड़ते हैं, गोलता, और वो गोलता हालत वक्फ में किसे बदल जाती है, हा से बदल जाती है। तो यहां तो वक्फ नहीं, ये तो दरमियाने इबारत है, यहां तो होना चाहिए था वमीन सम्मता, और इन्होंने क्या लिखा है वमीन सम्मह भाई, वमीन सम्मह। तो कभी कभार दरमियान इबारत में भी, कभी कलाम अरब में दरमियान इबारत में भी वक्फ की तरह लफ्ज को पढ़ दिया जाता है। इजरा उल वक्फी मकाम अल वसली, के वसल के मकाम में वक्फ को जारी कर दिया, वक्फ के अंदर जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ दिया उसको भाई। तो लिहाजा इसको भी बाज़ों का दरमियान इबारत में वमीन सम्मह पढ़ दिया जाता है भाई। तो ये मकाम तो वसल का था, यानी दरमियान इबारत है, लेकिन इसको वक्फ के दर्जे में उतार कर उसी तरह पढ़ दिया गया। तो ये सम्मह किस लिए आता है, मकाने बाईद के लिए, मकाने बाईद के लिए, और यहां पर ये मजाजी माना में इस्तेमाल है, इसलिए कि वमीन सम्मा, और इसी वजह से इस सम्मा के जरिए पीछे इशारा है, वो जो जिक्र किया कि मुब्तदा में असल तकदीम है, मुब्तदा में असल तकदीम है, कहते हैं इसी वजह से फीदारी ही जैदुन कहना तो जायज है और साहिबुहा फीदार कहना जायज नहीं है। तो वमीन सम्मा, सम्मा के जरिए यहां इशारा किसकी तरफ है, पीछे जो हुक्म बयान हुआ कि मुब्तदा में असल तकदीम है उसकी तरफ इशारा है, और वो तो एक हुक्म जिक्र हुआ, वो तो एक बात जिक्र हुई, वो तो जगह का नाम नहीं, और सम्मा तो वजह है किसके लिए, जगह के लिए, मकाने बाईद के लिए। तो यहां फिर ये मजाजी माना में इस्तेमाल है भाई। और ये जो वमीन सम्मा, ये जो मीन आया, ये मीन सबबिया है, मीन अजलिया है, इसके जरिए किसी चीज की सबब और इल्लत को जिक्र किया जाता है। इसीलिए साहिब जामी ने वमीन सम्मा की तफसीर क्या की, आई वमीन अजली, अजल के साथ की, ये बतलाने के लिए कि ये मीन सबबिया है। कहते हैं वमीन सम्मा, और इसी वजह से आई वमीन अजली अन्नल असलफिल मुब्तदा इत्तकदीम लफ्जन, और इसी वजह से कि मुब्तदा के अंदर असल जो है वो लफ्जन तकदीम है, कि लफ्जों के एतबार से उसको मुकदम करना चाहिए, जाजा जायज है कौलुहुम, ये कौल फीदारही जैदुन जायज है भाई। क्यों जायज है, फीदारही के अंदर हाज अमीर जैद को राजे है और जैद तो लफ्जों में मुअख्खर है, लेकिन फिर भी ये तरकीब जायज, क्यों जायज, क्योंकि जैद लफ्जों में तो बेशक मुअख्खर है लेकिन रुतबे के एतबार से मुकद्दम है, क्योंकि मुब्तदा में असल तकदीम है। देखो इबारत पे नजर रखो, साहिब काफिया की इबारत है जाजा फीदारी ही जैदुन, ये फीदारी ही जैदुन जायज है, और साहिब जामी ने जाजा के बाद कौलोहम का लफ्ज निकाला, जाजा कौलोहम फीदारी ही जैदुन, कि नहवियों का ये कौल जायज है फीदारही जैदुन। ये कौलुहुम क्यों निकाला, दरअसल वो एक एतराज का जवाब देना चाहते हैं। एतराज यहां ये होता है कि जाजा फेल है और आगे फीदारही जैदुन, ये पूरा जुमला इसके लिए फाइल बन रहा है, जायज है, क्या जायज है, फीदारही जैदुन जायज है, ये पूरा जुमला क्या बन रहा है उसके लिए, जाजा के लिए फाइल बन रहा है। और आपने अभी हमें बताया था चंद सफात कबल कि फाइल इसम का नाम है, फाइल किसका नाम है, इसम का नाम है, और यहां पर तो फीदारी ही जुमला फाइल बन रहा है, हालांकि जुमला तो फाइल नहीं बन सकता, फाइल तो कौन बनेगा, फाइल के लिए तो इसम होना जरूरी है, बात समझ में आ रही है, जैसे इन्होंने बताया मुब्तदा भी क्या होता है इसम, खबर भी क्या होती है इसम, इसी तरह जो फाइल गुजरा था वो भी किसका नाम है, इसम का, तो यहां तो पूरा जुमला फाइल बन रहा है, हालांकि जुमला तो फाइल नहीं बन सकता, फाइल के लिए तो इसम होना जरूरी। तो साहिब जामी जवाब दे रहे हैं कि भाई ये कौल की तावील में है, ये फीदारी ही जैदुन किस तावील में, कौल की तावील में है, यानी कौल फाइल है इसके जाजा के लिए, गोया असल कलाम यूं है, सुनो भाई, जाजा कौलुहुम जायज है उनका कौल, हम जमीर राजे कर लें अरब की तरफ या नहवियों की तरफ राजे कर लें, अरब का यह कौल जायज है फीदारी ही जैदुन, या नहवियों का यह कौल जायज है फीदारी ही जैदुन। भाई देखिए कौल मस्तर है भाई, और मैंने बताया था मस्तर भी अपने फेल की तरह अमल करता है। और काला फेल, काला फेल के लिए एक फाइल चाहिए तो एक मफूल भी चाहिए। कुल तो, मैंने कहा, देखो ताजमीर फाइल है, ताजमीर फाइल, और मैंने क्या कहा, फी दारी ही जैदुन। ये याद रखो, ये जो आगे काला के बाद जो जुमला आता है ये दरअसल पूरा जुमला मफूल भी ही होता है काला के लिए। कुल तो, मैंने कहा, क्या कहा, फीदारी ही जैदुन, ये फीदारी ही जैदुन, ये पूरा जुमला ये मफूल भी ही है काला के लिए। काला फेल अपने फाइल और मफूल भी ही से मिलकर जुमला फेलिया हुआ। क्या बात हुई कि काला के लिए जैसे एक फाइल चाहिए एक मफूल भी चाहिए, और मफूल क्या होता है, वो जो आगे मकूला होता है, वो जो बात की जाती है, वो सारा इसका मफूल भी ही होता है भाई। तो यहां पर भी जाजा के बाद कौलुहुम निकाला, मस्दर निकाल लिया, और मस्दर भी फेल की तरह अमल करता है, जैसे फेल फाइल को रफा देता है और मफूल को नसब, तो इसी तरह कौल आया और कौल मस्दर है। और मैंने बताया मस्दर की उमूमन अपने फाइल की तरफ इजाफत कर देते हैं, मस्दर के साथ फाइल का जिक्र जरूरी नहीं, कभी जिक्र किया जाता है कभी नहीं किया जाता, लेकिन जब जिक्र किया जाए तो उमूमन क्या कर दिया जाता है, मस्दर की अपने फाइल की तरफ इजाफत कर दी जाती है अपने। तो यहां पर भी कौल की हुम जमीर की तरफ इजाफत कर दी, कौलुहुम उनका कौल, ये हुम कौन है, ये कॉल करने वाले हैं, ये फाइल हैं भाई। तो हुम जमीर मजरूर तो लफ्जन है लेकिन महल्लन मरफू है, ये फाइल है किसके लिए, कॉल के लिए, तवज्जो है। और फी दारी ही जैदुन, ये सारा जुमला मकूला है कॉल मस्तर के लिए, यानी ये उसके लिए मफूल भी ही है। तो कॉल मस्तर अपने मुजाफिल और मफूल भी ही से मिलकर यह फाइल हुआ जाजा के लिए। भाई देखो, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला बनता है, लेकिन मस्दर अपने फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला नहीं। कौल देखो मस्दर है, इसमें कोई बात पूरी है नहीं, मस्दर के साथ हजार चीजें भी जुड़ जाएं ये मुफरद है तो मुफरद ही रहेगा भाई। तो कौल के साथ हुम जमीर मुजाफिल फाइल की भी जोड़ दी और आगे मफूल बिही को भी जोड़ दिया पूरा मकूला, लेकिन फिर भी ये जब कौल के साथ जुड़ गए तो ये क्या बन गए, मुफरद। तो कौल मस्दर अपने मुजाफिले और मफूल बिही से मिलकर ये मस्दर फाइल हुआ किसके लिए, जाजा के लिए, किसके लिए, जाजा के लिए। तो इश्काल क्या होता था कि जाजा के लिए फीदारी ही जैदुन पूरा जुमला फाइल बना, हालांकि फाइल का मुफरद होना जरूरी। तो बतला दिया कि ये पूरा जुमला किस तावील में है, कौल की तावील में है, क्योंकि ये कौल है, ये क्या है, कौल, और कौल तो मस्तर है, ये तो मुफरद है, इसम है, और ये तो फाइल बन सकता है, तो ये कौल फाइल है जाजा के लिए। ये जवाब दिया किसने, साहिबे जामी ने। यहां और भी तावील कर सकते हैं आप, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। एक जवाब ये कि कौल निकालने की कोई जरूरत नहीं, फी दारी ही जैदुन, ये लफ्ज मुराद है, क्या मुराद है, लफ्ज मुराद है, यानी ये हाजल लफ्ज की तावील में है, और हाजल लफ्ज ये तो इसम है, ये तो फाइल बन सकता है, तो गोया कलाम यूं है। साहिब काफिया ने क्या जिक्र किया, जाजा फीदारी ही जैदुन, ये फीदारी ही जैदुन जायज है, और ये किस तावील में, हाजल लफ्ज की तावील में, गोया साहिब काफिया ये कह रहे हैं जाजा हाजल लफ्ज, ये लफ्ज जायज है। तो देखो हाजल लफ्ज ये इसम है, ये फाइल है किसके लिए, जाजा के लिए। तवज्जो है, हाजा मौसूफ और अल्लफ्ज उसकी सिफत, बात समझ में आ गई। या तीसरी तावील आप यह कर सकते हैं कि लफ्ज बोलकर जब लफ्ज मुराद होता है तो वह दरअसल आलम होता है, किसके दर्जे में, आलम के दर्जे में होता है। तो गोया वो जुमला जो नहवी आपस में इस्तेमाल करते थे, फीदारी ही जैदुन, हमने उसका नाम ही फीदारी ही जैदुन रख दिया, उसका नाम ही फीदारी ही जैदुन रख दिया, तो अब ये आलम है, और आलम वो तो इसम होता है, तो ये इसम की तावील में है। तो कितने जवाब हो गए, तीन जवाब, या तो ये कौल की तावील में है ये जुमला, दूसरा कि ये हाजा लफ्ज की तावील में है, और तीसरा जवाब क्या कि ये आलम है भाई। और मैंने निशानी भी बतलाई थी कि आलम उसको कहते हैं जिसका तर्जमा नहीं किया जाता। अब आप देखिए, आपसे कोई तर्जमा पूछे, वमीन सम जाजा फी दारी ही जैदुन, कैसे तर्जमा होगा? वमीन सम, और इसी वजह से जाजा जायज है, क्या जायज है? फी दारी ही जैदुन। भाई इसका तर्जमा क्यों नहीं करते कि जैद अपने घर में है? वमीन सम जाजा फी दारी ही जैदुन, आपको तो यूं कहना चाहिए था और इसी वजह से जायज है कि जैद अपने घर में है, लेकिन आप फी दारी ही जैदुन का तर्जमा नहीं करते, बल्कि क्या कह रहे हैं कि फी दारी ही जैदुन कहना जायज है। देखा, मालूम हुआ लफ्ज़ बोलकर लफ्ज़ मुराद है, तो ये आलम की तावील में है और आलम का तर्जमा नहीं किया जाता। तो कहते हैं जाज़ा क़ौलुहुम, नहवियों का ये कौल जायज है, फी दारिही ज़ैदुन मा कौनि ज़मीरि आइदन इला ज़ैदिन अल मुतअख्खिरि लफ्ज़न, बावजूद इसके कि जमीर जो है वो लौट रही है उस ज़ैद की तरफ, अल मुतअख्खिरि लफ्ज़न, जो लफ्जों के एतबार से मुतअख्खिर है, ये जायज है। क्यों? लितक़द्दुमिही रुतबतन, बवजह रुतबे के एतबार से इसके मुकदम होने के, लिइसालति तकदीम, बवजह तकदीम के असल होने के, कि इसके अंदर तकदीम असल है, इस वजह से ये रुतबे के एतबार से मुकदम है। वमतना कौलुहुम, और मुमतना है नहवियों का ये कौल, साहिबू हाफिद दारी, ये कौल मुमतना है। यहां पर भी देखो, इम्तना फेल आया और साहिबू हाफिद दार, ये पूरा जुमला उसका फाइल बन रहा है, और जुमला तो फाइल नहीं बन सकता, फाइल तो मुफरद होता है, इसम होता है, तो बतलाया कि यह भी किस तावील में है, कौल की तावील में है, यह उसके लिए मकूला बन जाएगा। तो गोया असल में फाइल कौल, लफ्ज कौल है, क्या फाइल है? लफ्ज कौल है, और साहिबुहा फिदार उसके लिए मकूला है भाई। और दूसरी तावील क्या, कि हाजल लफ्ज की तावील में है, अय वमतना हाजल लफ्ज, तो हाजल लफ्ज की तावील। और तीसरा यह कि यह आलम है, आलम के दर्जे में है भाई। और यह कौल मुमतने है, साहिबुहा फिदारी, साहिबुहा फिदार मुमतने है, क्योंकि इसके अंदर हाज अमीर राजे है अद्दार को, और अद्दार मुअन्नस सिमाई है भाई, यह अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी तरफ हाज अमीर मुअन्नस की राजिया की भाई, क्योंकि इसके अंदर इजमार कबला जिक्र लाजिम आया, और ये इजमार कबला जिक्र लफजन भी है, लफ्जों में भी अद्दार मुअखर, और रुतबतन भी है, क्योंकि रुतबे में भी फिदार खबर के अंदर वाक है और खबर मुअखर होती है भाई। और जबकि साहिबुहा ये तो मुब्तदा के मकाम में है, तो ये तरकीब मुमतना है, मुमतना है यानी जायज नहीं है, जायज नहीं है या ज़ईफ कलाम है भाई। तो ये मुमतने है क्यों? लिआउदी ज़मीरी इलद्दारी, बवजह लौटने ज़मीर के इलद्दारी, दार की तरफ, वह हुआ फी हय्यज़िल खबरी, और वो खबर के मकाम में है भाई। हय्यज का माना मकान और जगह, जगह तवज्जो है, जरा फिर इबारत पे नजर रखो, साहिबुहा फिदार, ये नहीं कहा कि जमीर दार की तरफ लौट रही है, और दार तो खबर है, दार तो खबर, क्योंकि अदार खबर नहीं है, फिदार खबर है, खबर क्या है? फिदार, जार मजरूर खबर है, तो लिहाजा ये नहीं कहा कि अद्दार खबर है, बल्कि ये कहा अद्दार खबर के महल में है, खबर की जगह में है भाई। ये माना है लिआउदि ज़मीर इलद्दारी, बवजह लौटने जमीर के अद्दार की तरफ, वह हुआ फी हय्यज़िल खबरी, और ये लफ्ज दार जो है, हुआ फी हय्यज़िल खबरी, वो उस खबर के मकाम में है, उस खबर की जगह में है, अल्लज़ी असलुहु ताखीर, वो खबर के जिसके अंदर असल जो है मुअख्खर करना है, फयल जमु आउदु जमीर इलल मुतअख्खिर लफ्जन व रुतबतन, तो लाजिम आता है जमीर का लौटना उस चीज की तरफ जो मुतअख्खिर है लफ्जों के एतबार से भी और रुतबे के एतबार से भी, वह हुआ गैरु जायजिन, और ये जायज नहीं है। आगे देखिए, कहते हैं वकद यकूनुल मुब्तदा उन्नकिरतन, और कभी कभार मुब्तदा नकेरा होता है। याद रखिए, मुब्तदा के अंदर असल है मारिफा होना, और खबर के अंदर असल है नकेरा होना। मुब्तदा को मारिफा होना चाहिए, मारिफा मारिफत से है, मारिफत का माना है पहचान, यानी जिसकी आपको पहचान हो। मारिफा को मारिफा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको उसकी पहचान होती है। मसलन आपका एक साथी है जैद, زید، میں نے جیسے ہی زید کہا آپ کے ذہن میں فوراً اپنے اس ساتھی کی صورت آ گئی، آپ نے فوراً اس کو پہچان لیا کہ کس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو معرفہ کو معرفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ معرفت سے ہے۔ معرفت کا کیا معنی؟ پہچان۔ تو معرفہ بھی ایک معین ذات پر دلالت کرتا ہے، یعنی آپ کو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر معین ذات پر وہ دلالت نہ کرے پھر تو وہ معرفہ ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو اس کی معرفت نہیں ہے۔ اور نکرا نکارت سے ہے، نکارت کا معنی ہے نہ جاننا، ایک چیز کا مبہم ہونا۔ چونکہ نکرا کی آپ کو پہچان نہیں ہوتی، وہ مبہم ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکرا۔ میں نے کہا کتاب، کوئی آپ کے ذہن میں کتاب، کوئی خاص کتاب آئی؟ نہیں۔ میں نے کہا قلم، کوئی خاص قلم آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں۔ دیکھا، قلم مبہم ہے، کون سا قلم مراد ہے؟ ہر قلم پر یہ صادق آ رہا ہے، اس کی آپ کو پہچان نہیں، کون سا قلم مراد ہے، کوئی تعین نہیں یہاں پر۔ اسی طرح میں نے کہا رجلن، دیکھو کوئی خاص معین شخص آپ کے ذہن میں نہیں آیا۔ تو نکرہ جو ہوتا ہے وہ مبہم ہوتا ہے، اس میں تعین نہیں ہوتی، وہ غیر معین پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے۔ تو مبتدا میں اصل یہ ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے۔ وجہ یہ کہ آپ مبتدا اور خبر کے ذریعے کسی کو کوئی بات بتلانا چاہتے ہیں، مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو پھر جس کے بارے میں بات بتلانا چاہتے ہیں اس کی مخاطب کو پہچان ہونی چاہیے کہ مثلا میں نے کہا زید، اب زید کی اس کو پہچان ہے جس کے بارے میں بات بتلائی جا رہی ہے، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور خبر کے اندر اصل یہ ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے، یعنی اس کی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ زید قائم ہے تو زید قائم کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ اگر اس کو پہلے پتا ہے کہ زید قیام کے ساتھ متصف ہے تو زید قائم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی تو قائم خبر یہ کیسی ہونی چاہیے؟ جس کے مخاطب کو پہچان نہ ہو، یعنی جس کو اس بات کا پتا نہ ہو۔ اب ایک شخص ہے اس کو پتا نہیں تھا، مثلا دوسری مثال لے لو، زید عالم، آپ کا ایک ساتھی ہے زید، آپ اس کو جانتے ہیں، تعارف ہے، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ عالم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں زید عالم، زید کی آپ کو پہچان تھی اس لیے میں زید کو معرفہ لایا، کیونکہ آپ کو اس کی معرفت ہے، اور اس کے عالم ہونے کا پتا نہیں تھا، میں وہ آپ کو بتلانا چاہتا تھا، تو عالم میں نکرہ لاؤں گا، کیونکہ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی مخاطب کو پہچان نہیں ہوتی، اور پھر ہی فائدہ ہوگا کلام کے اندر۔ دیکھو جب میں نے کہا زید عالم، اب آپ کو ایک نئی بات کا پتا چل گیا کہ زید عالم ہے، آپ کو اس بات کا پہلے پتا نہیں تھا۔ تو مبتدا میں اصل کیا ہے؟ وہ معرفہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ میں اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، آپ کو اس کی پہچان ہوگی تو بات سمجھ بھی آئے گی، اگر پہچان نہیں تو بات کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور خبر میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، اس کی آپ کو پہچان نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے ہی پتا ہے تو اس کو لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا بھائی۔ لہذا خبر میں اصل کیا ہے؟ وہ کیا ہونی چاہیے؟ نکرہ ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر یاد رکھو، آپ کو آگے بتائیں گے صاحب کافیہ بھی، کہ مبتدا میں اصل تو ہے معرفہ ہونا، لیکن کبھی کبھار نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ نکرہ کے اندر تخصیص پیدا کر دی جائے، نکرہ کے اندر تخصیص پیدا کر دی جائے۔ تخصیص کہتے ہیں دیگر احتمالات کو کم کرنا یا دیگر احتمالات کو ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں تخصیص بھائی۔ اور جبکہ بعض علماء نے فرق کیا، وہ فرماتے ہیں علم نحو کے اندر تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو ختم کرنا، اور علم معانی جو ہے، جو بڑی نحو ہے، جو علم بلاغت ہے، علم معانی کے اندر تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا یا دیگر احتمالات کو ختم کرنا بھائی۔ تو بہرحال یہاں پر بھی تخصیص کا معنی جو وہ ذکر کریں گے، دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا، دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا۔ مثلا دیکھو بھائی، مثلا میں نے لفظ غلام کہا، اب دنیا میں فرض کرو 10 لاکھ غلام ہیں، تو یہ لفظ غلام ان میں سے ہر ایک پر صادق آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ والا غلام ہو، ہو سکتا ہے یہ والا غلام، یہ والا غلام، یہ والا غلام۔ تو گویا اس لفظ غلام میں 10 لاکھ احتمال ہیں، ہر غلام پر یہ صادق آتا ہے، ہر غلام پر یہ بولا جا سکتا ہے۔ और फर्ज करो इनमें से 1 लाख गुलाम मोमिन हैं और बाकी गैर मोमिन हैं भाई। तो अब इसके साथ मसलन मैं सिफत बढ़ा देता हूं, गुलामुन मोमिनुन, यानी मोमिन गुलाम। अब जब मैंने मोमिन की सिफत लगा दी गुलाम के साथ तो इसमें तख्सीस आ गई। पहले यह गुलाम का लफ्ज 10 लाख पर सादिक आ रहा था और अब जब सिफत साथ लगा दी तो अब यह सिर्फ 1 लाख गुलामों पर सादिक आ रहा है। देखो एहतमालात कम हो गए, पहले लफ्ज गुलाम में कितने एहतमालात थे 10 लाख, और जब मैं सिफत ले आया गुलाम मुमिनुन अब कितने एहतमाल रह गए 1 लाख। तो देखो ये तख्सीस आ गई, एहतमालात कम हो गए भाई। तो ये मारिफा तो न हुआ लेकिन मारिफा के करीब हो गया, मारिफा के करीब हो गया। मसलन देखो ये है मारिफा और ये इससे दूसरे किनारे पर दूर नकेरा है। मारिफा किसे कहते हैं जो एक मुअय्यन जात पे दलालत करे, तवज्जो है। देखो ये तिपाई के एक कोने पर फर्ज करो ये है मारिफा और तिपाई के दूसरे कोने पर है नकेरा। मारिफा किसे कहते हैं जो एक मुअय्यन जात पर दलालत करे, और नकेरा किसे कहते हैं जो जाते गैर मुअय्यन पर दलालत करे। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर इस नकेरा के अंदर हमने क्या पैदा कर दी, तख्सीस पैदा कर दी। तख्सीस की वजह से दीगर एहतमालात कम हो गए। तो ये जो नकेरा है ये मारिफा तो न बना लेकिन एहतमालात कम हो गए, ये मारिफा के करीब आ गया। जितने एहतमालात कम होते जाएंगे ये मारिफा के करीब से करीब तर होता चला जाएगा। तो तख्सीस किसे कहते हैं, दीगर एहतमालात को कम करना या खत्म करना। तो लिहाजा जब नकेरा की सिफत लाए तो दीगर एहतमालात कम हो गए, तो ये मारिफा तो न हुआ लेकिन मारिफा के करीब हो गया। और करीब इला शय फी हुक्म शय होती है, जो जिस चीज के करीब हो उसका वही हुक्म होता है। तो लिहाजा जब ये नकेरा मारिफा के करीब हो गया तो अब इसका मुब्तदा बनना सही, क्योंकि मारिफा का मुब्तदा बनना सही था। और ये नकेरा जब तख्सीस इसके अंदर आ गई तो ये भी मारिफा के करीब हो गया और इसका भी वही हुक्म हो गया जो मारिफा का था, और मारिफा तो मुब्तदा बन सकता था, लिहाजा ये नकेरा मुखस्ससा भी मुब्तदा बन सकता है। बात समझ में आ गई, करीब इला शय फी हुक्म शय, जो जिस चीज के करीब होती है उसका वही हुक्म होता है। जैसे देखो बादशाह और उसका सेक्रेटरी, बादशाह का जो सेक्रेटरी है उसका हुक्म भी बादशाह की तरह चलता है और लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो बादशाह का करीब है। हत्ता के बड़े वजीर ने भी बादशाह से मिलना हो तो उस सेक्रेटरी के जरिए वक्त लेगा और फिर ही बादशाह से उसकी मुलाकात हो सकेगी। तो देखो सेक्रेटरी बादशाह के करीब है और करीब इला शय फी हुक्म शय होता है, लिहाजा सेक्रेटरी से भी लोग किस तरह डरते हैं, जैसे बादशाह से डरते हैं। तो आपको साहिब काफिया बताएंगे कि नकेरा में भी जब तख्सीस आ जाए तो फिर इसका मुब्तदा बनना सही है, और तख्सीस के वो 6 तरीके जिक्र करेंगे जो आगे आ रहे हैं। देखिए भाई पहले मतन देख लें, कहते हैं वक़द यकूनुल मुब्तदा उन नकेरा तन, और कभी कभार मुब्तदा जो है वो नकेरा होता है। ये कद जो है ना कभी तकलील के लिए आता है, यहां ये तकलील के लिए है, कभी कभार मुब्तदा नकेरा होता है। मैंने आपको बताया भाई मुब्तदा के अंदर 2 चीजें असल हैं, क्या, एक तो यह कि मुब्तदा को मुकद्दम होना चाहिए, और दूसरा क्या कि मुब्तदा में असल यह है कि मारिफा होना चाहिए। साहिब काफिया ने सिर्फ 1 चीज जिक्र की कि मुब्तदा में असल यह है उसको मुकद्दम होना चाहिए, मुब्तदा में असल यह है कि वह मारिफा होना चाहिए, इसको उन्होंने जिक्र नहीं किया लफ्जों में, तवज्जो है। हां वकद यकूनुल मुब्तदा उन नकेरा तन, कभी कभार मुब्तदा नकेरा भी होता है। इस इबारत के जरिए उन्होंने इशारा कर दिया कि मुब्तदा के अंदर असल क्या है, मारिफा होना है, हां कभी कभार यह नकेरा भी होता है। मालूम हुआ दोनों चीजें उन्होंने यहां जिक्र कर दी भाई, जो 2 असल है मुब्तदा में, उसका मुकद्दम होना भी और उसका मारिफा होना भी। कहते हैं वक़द यकूनुल मुब्तदा उन नकेरतन, और कभी कभार मुब्तदा नकेरा होता है, इदा तख़स्सत बिवजहिम्मा, जब वो तख़सीस पा जाए बिवजहिम्मा, किसी वजह से, जब वो तख़सीस पा जाए किसी भी वजह से, मिसलु मिसाल के तौर पर, वल अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। अब देखो इस मिसाल के अंदर वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, ये लाम जो है वला अब्द उन पर, ये लाम इसको लाम इब्तिदा कहते हैं और ये जुमले की ताकीद के लिए आता है। जैसे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्ना किस लिए आता है? जुमले की ताकीद के लिए आता है। अन्ना तो जुमले को मुफरत के माना में कर देता है, जबकि इन्ना जुमले को जुमला ही रखता है, अलबत्ता उसमें ताकीद और जोर पैदा कर देता है। इसी तरह ये लाम भी इन्ना की तरह क्या करता है, जुमले में ताकीद पैदा करता है, उसमें जोर पैदा कर देता है। तो यहां पर ये लाम ताकीद के लिए है। अब्दुन ये है मुबतदा भाई, अब्दुन मुबतदा है और ये देखो नकेरा है। अलबत्ता इसके आगे सिफत मुमिनुन जिक्र कर दी गई और इसकी वजह से इसके अंदर तख्सीस आ गई, और नकेरा के अंदर जब तख्सीस आ जाए तो फिर उसका मुबतदा बनना सही। इसीलिए अब्दु मुमिनुन ये हुआ मुबतदा और खैरुम मिन मुशरिकिन ये हुई उसकी खबर भाई। तो ये तख्सीस का पहला तरीका है। साहिब काफिया नाम नहीं बतलाएंगे, नाम मैं जिक्र करता जाऊंगा, आपने याद रखना है। तख्सीस के छह तरीके हैं और ये पहला तरीका इन्होंने जिक्र कर दिया। इसको कहते हैं तख्सीस बिसिफत, तख्सीस बिसिफत, सिफत के जरिए तख्सीस भाई, तख्सीस बिसिफत। अच्छा, यहां इबारत आई इदा तखस्सत बिवजहिम्मा, जब वो नकेरा तख्सीस पा जाए बिवज हिम मा, किसी भी वजह से। ये जो मा आया ना बिवज हिम के बाद, याद रखो भाई ये बाज़ औकात नकेरा के बाद इसको जिक्र किया जाता है, तो नकेरा के बाद। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये उस नकेरा की सिफत बनता है, सिफत बनता है और ये उसके इबहाम को और बढ़ा देता है। जैसे देखो इजा तखस्सत बिवज हिम मा, जरा मां के बगैर तर्जमा सुनो, इजा तखस्सत बिवज हिन, जब वो नकेरा तख्सीस पा जाए किसी वजह से, मां को हमने खत्म कर दिया, इजा तखस्सत बिवज हिन, जब वो नकेरा तख्सीस पा जाए बिवज हिन किसी वजह से, देखो वज हिन नकेरा है, तख्सीस पा जाए वो नकेरा किसी वजह से, अब इसकी सिफत मां लाई गई, ये मां भी नकेरा है और इसने इसके इबहाम को और बढ़ा दिया। अब तर्जमा यूं होगा इजा तखस्सत बिवज हिम मा, जब वो नकेरा तख्सीस पा जाए बिवज हिम मा किसी भी वजह से। पहले क्या तर्जमा था, जब वो नकेरा तख्सीस पा जाए किसी वजह से, अब क्या तर्जमा, जब वो नकेरा तख्सीस पा जाए किसी भी वजह से। देखो उसने क्या किया, उसके इबहाम को और ज्यादा बढ़ा दिया भाई, उसके उमूम को और ज्यादा बढ़ा दिया भाई। तो बिवजहिन ये है मौसूफ और ये मा बमाने शय उनके, ये नकेरा ये उसकी सिफत है भाई। बात समझ में आ गई। तो बिवजहिन ये मजरूर है बाजारा की वजह से और मा उसकी सिफत है और सिफत का वही एराब होता है जो मौसूफ का। तो ये मा भी महल्लन मजरूर है, ये मबनी है महल्लन मजरूर है भाई। जबकि बाद उलमा फरमाते हैं नकेरा के बाद ये मां जायद आता है और ये उसके अंदर ताकीद पैदा कर देता है, उसके अंदर जो इबहाम था। नकेरा में क्या होता है इबहाम, मैंने कहा रजुलुन, आपको कोई पता चला कौन सा रजुल मुराद है? नहीं, तो नकेरा में इबहाम होता है। ये मां नकेरा के बाद बढ़ाते हैं और ये सिफत नहीं होता, ये जायद है। ये क्या है? जायद है और ये सिर्फ उसके अंदर जो इबहाम है उसको पक्का कर रहा है। पहली तारीफ क्या की थी कि ये मां सिफत है और ये इबहाम को और बढ़ा देता है। और बाज़ उलमा क्या फरमाते हैं कि ये सिफत नहीं, ये जायद है, तवज्जो है, ये वैसे बढ़ाते हैं नकेरा के बाद, अपने माना का फायदा नहीं देता। लेकिन मैंने बताया कि हुरूफ जायद भी क्या करते हैं, ताकीद का फायदा, तो ये यहां ताकीद पैदा कर रहा है भाई, यानी उसी के अंदर जो इबहाम है उसको पक्का कर रहा है। दोबारा देखिए शरा के साथ कहते हैं वक़द यकून उल मुबतदा उन नकेरातन, और कभी कभार मुबतदा जो है वो नकेरा होता है। व इन कान अल असलु फीही अन यकून मारिफतन, अगरचे मुबतदा में असल यह है कि वो मारिफा हो। लिअन्न लिल मारिफति मानम मुअय्यनन, इसलिए क्योंकि जो मारिफा होता है उसका एक मुअय्यन माना होता है, मारिफा का एक मुअय्यन माना होता है, वो एक मुअय्यन जात और मुअय्यन चीज पर दलालत करता है। वल मतलूबुल मुहिमुल कसीरुल वुकूई फिल कलामी, और वो जो मतलूब होता है अल मुहिम का माना अहम अहम, अल कसीर उल वुकू जो कसरत से वाकई हो भाई, कहते हैं वल मतलूब उल मुहिम, और वो मतलूब जो अहम होता है, अल कसीर उल वुकू कसरत से वाकई होता है, फिल कलाम कलाम के अंदर, इन्नमा हुवल हुक्मु अलल उमूरिल मुअय्यनती, वो हुक्म लगाना है उमूर मुअय्यना पर। भाई आप अगर अपने कलाम में भी गौर कर लें, मैंने बताया मुब्तदा के अंदर असल क्या है, वो मारिफा हो, और खबर में असल क्या है, नकेरा हो, और आसान लफ्जों में मुब्तदा वो है जिसके बारे में बात की जाए, और खबर वो है जो बात की जाए। आप अगर अपने कलाम में भी गौर कर लें, आप अक्सर जो बातें करते हैं किसी मुअय्यन चीज के बारे में करते हैं, किसके बारे में, मुअय्यन। तो हम जो हुक्म लगाते हैं अक्सर 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 हम मुअय्यन चीजों पर हुक्म लगाते हैं, गैर मुअय्यन पर बहुत कम हम हुक्म लगाते हैं। तो मालूम हुआ मुतकल्लिम का अहम मतलूब क्या होता है कि वो हुक्म अक्सर किस पर लगाता है, मुअय्यन चीज पर हुक्म लगाता है। यह माना है वल मतलूब उल मुहिम, और वो जो मतलूब होता है अल मुहिम अहम होता है, और वो जो अहम मतलूब है किसका अहम मतलूब, मुतकल्लिम का, किसका, वो हुक्म मुतकल्लिम बात कर रहा है ना, मुतकल्लिम हुक्म लगाएगा तो उसका अहम मतलूब क्या होता है, वो किस पर हुक्म लगाता है, मुअय्यन पर यानी मारिफा पर। तो कहते हैं वल मतलूब उल मुहिम, और वो जो अहम मतलूब होता है अल कसीर उल वुकूई, ये समझ लो भाई, अल कसीर उल वुकूई, अल कसीर है मुजाफ, अल वुकूई है मुजाफुन इलै, अल कसीर मुजाफ, अल वुकूई मुजाफुन इलै। इस पर आपके जहनों में इश्काल आएगा कि ये तो मुजाफ पर भी अलिफ लाम दाखिल है, मुजाफ पर भी अलिफ लाम दाखिल है, हालांकि मुजाफ तो नकेरा होता है और उसकी इजाफत की जाती है मारिफा की तरफ और फिर उसको मारिफा बनाते हैं। तो याद रखना ये अल कसीर उल वुकूई आपस में मुजाफ और मुजाफिले हैं भाई। तो सवाल पैदा हुआ कि अल कसीर तो मुजाफ है और इस पर अलिफ लाम फिर कैसे दाखिल हो गया, तो याद रखना सिफत का सीगा जब मुजाफ हो रहा हो तो उस पर अलिफ लाम का लाना जायज है, बशर्ते के आगे मुजाफिले पर भी अलिफ लाम दाखिल हो भाई। तवज्जो है, अल कसीर पर ये मुजाफ है इस पर भी अलिफ लाम लाना जायज, बशर्ते के आगे जो मुजाफिले है उस पर भी अलिफ लाम हो, और यहां आप देख रहे हैं कि जो मुजाफिले अल वुकू है उस पर भी अलिफ लाम दाखिल है। तो कहते हैं वल मतलूब उल मुहिम उल कसीर उल वुकू फिल कलामी, और वो जो अहम मतलूब है और कसीर उल वुकू है कलाम के अंदर, इन्नमा हुवल हुक्म अलल उमूर अल मुअय्यनती, वो हुक्म लगाना है उमूर मुअय्यना पर, वलाकिन्नहु ला यकउ नकिरतन अलल इतलाक बल इदा तखस्सत तिलकन नकिरतु बिवजहिम मा। यहां से आगे इन्होंने क्या बताया मतन में, वकद यकून उल मुब्तदा नकिरतन, कभी कभार मुब्तदा नकेरा भी होता है। आगे आप साहिबे जामी बतला रहे हैं कि भाई नकेरा मुब्तदा तो बनता है लेकिन अलल इतलाक नहीं, यानी हर नकेरा मुब्तदा नहीं बनता, बल इजा तखस्सत बिवजहिमा, बल्कि जब वो तख्सीस पा जाए किसी वजह से, तो जब तख्सीस आएगी तो वो नकेरा मारिफा के करीब हो गया, जो और करीबी लशे फी हुक्म शय होती है, लिहाजा मारिफा तो मुब्तदा बनता है तो अब ये नकेरा मुखस्ससा भी मुब्तदा बन सकता है। तो कहते हैं वला किन्नहु लायक काउन नकेरातन, लेकिन मुब्तदा जो है वो नकेरा होकर वाक नहीं होता अलल इतलाक भाई, यानी बगैर किसी कैद के नकेरा मुब्तदा वाक हो जाए ऐसा नहीं है, बल इदा तखस्सत तिलकन नकेरतु, बल्कि जब तख्सीस पा जाए तिलकन नकेरतु, वो नकेरा भाई तखस्सत के बाद तिलकन नकेरा साहिब जामी लेकर आए, तो ये जमीर का मर्जा बतलाना चाहते हैं कि तखस्सत के अंदर हिया जमीर किसको राजे, नकेरा को राजे, तवज्जो है, और तखस्सत के बाद तिल का नकेरा निकालकर एक तो जमीर का मर्जा बतलाया और दूसरा ये बतला दिया कि पीछे नकेरा जिक्र था, और नकेरा का लफ्ज देखो इबारत में क्या था, नकेरा था या मारिफा था, नकेरा लफ्ज था या अन नकेरा था, इबारत पे देखो वकद यकून उल मुब्तदा उन नकेरतन, ये नकेरा का लफ्ज इबारत में नकेरा है भाई,
इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं। जब ये नकेरा है लेकिन एक दफा जब एक चीज जिक्र हो जाए तो वो मुतायन हो जाती है यानी मारिफा हो जाती है। इसलिए आगे कहा इदा तखससत तिलकन नकेरा, तू देखो अब मारिफा ले आए। क्या ले आए? तखससत नकेरा तो नहीं कहा, तवज्जो है। क्या बतलाना चाहते हैं कि तखससत में हिया जमीर किसको राजे है? तो बतलाया कि वो नकेरा को राजे, तो कहना तो यूं चाहिए था इजा तखससत नकेरा तुन, क्योंकि पीछे क्या आया था? नकेरा। लेकिन साहिब जामी ने क्या कहा? तिलकन नकेरा तू, मारिफा ले आए। बतलाना ये चाहते हैं कि जब एक दफा चीज जिक्र हो जाए तो वो क्या हो जाती है? मुतायन हो जाती है, मारिफा हो जाती है। लिहाजा अब तिलकन नकेरा वो मारिफा लेकर आए। तिल का इसमें इशारा और ये मौसूफ और अन नकेरा उसकी सिफत, तो वो वाला नकेरा यानी जिसका अभी पीछे जिक्र हुआ था। जैसे देखो मैं आपसे कहता हूं जानी रजुलुन अमसी, अमसी गुज़श्ता कल, जानी रजुलुन अमसी गुज़श्ता कल मेरे पास एक आदमी आया था। रजुलुन में नकेरा लाया, क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं जानते, ना आपको उसके नाम का पता, ना आपको उसके शक्ल का पता, ना आपको उसके कपड़ों का पता, किसी चीज का पता नहीं। तो जब आपको पहचान नहीं तो मैं क्या कहूंगा? तो फिर मैं क्या लाऊंगा? नकेरा ही लाऊंगा। जानी रजुलुन अमसी, देखो रजुलुन में नकेरा लाया, लेकिन एक दफा जब चीज जिक्र हो जाए तो वो क्या हो जाती है? मुतायन। तो आगे मैं कहता हूं फअकरमतु अर्रजुला, तो फिर मैंने उस आदमी का इकराम किया, या फअकरमतु जालिकर रजुला, मैंने उस आदमी का इकराम किया। तवज्जो है। तो अब ये आगे मारिफा में ले आया, पहले रजुल नकेरा था, अब अकरम तो अर रजुला में मारिफा ले आया। क्यों मारिफा लाया? क्योंकि एक दफा जब चीज जिक्र हो जाए तो वो क्या हो जाती है? मुतायन। क्या माना मुतायन? मुतायन होने का ये माना नहीं है कि आपको उस आदमी के नाम का पता है या कुछ नहीं। भाई नाम वगैरह का तो अभी भी आपको नहीं पता, ना आपने उसको देखा है, ना आपको उसके नाम का पता, ना उसके कपड़ों के रंग का पता, ना शक्लो सूरत का पता। मैं अभी बात कर रहा हूं जा अनी रजुल नाम से, गुजश्ता कल मेरे पास एक आदमी आया था, अकरम तो रजुल, तो मैंने उस आदमी का इकराम किया। देखो मैंने उस आदमी कहा, आप समझ गए या नहीं समझ गए? किस आदमी की बात हो रही है? जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। तो एक दफा जब चीज जिक्र हो जाए तो वो मुतायन हो जाती है। तो यहां पर भी साहिब जामी तिल का नकेरा लाए, हालांकि पीछे नकेरा का लफ्ज नकेरा था, और आगे क्या लाए? मारिफा लाए कि एक दफा जब नकेरा जिक्र हो गया अब वो क्या हो गया? मुतायन हो गया। भाई तो कहते हैं बल इदा तखस्स तिलकन नकेरा तो बिवजही मां, बल्कि जब तखसीस पा जाए वो नकेरा बिवजही मां किसी भी वजह से, मिन वजूही तखसीसी तखसीस की वजहों में से, जब वो नकेरा तखसीस पा जाए बिवजही मा मिन वजूही तखसीसी तखसीस की वजूह में से किसी भी वजह से, तखसीस के तरीकों में से किसी भी तरीके से वो तखसीस पा जाए, इस भी तखसीसी यकिलुश्तेराकुहा, इसलिए क्योंकि तखसीस की वजह से यकिलुश्तेराकुहा उस नकेरा का इश्तेराक कलील हो जाएगा, नकेरा का इश्तराक कलील हो जाएगा। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की गुलाम का लफ्ज है, दुनिया में 10 लाख गुलाम है और उनमें से 1 लाख मोमिन है, तो जब मैंने कहा गुलाम तो ये कितने पर सादिक आ रहा है? 10 लाख पर। और जब मैंने कहा गुलाम उन मोमिनुन, अब ये कितने पर सादिक आ रहा है? 1 लाख पर। तो देखो इसका इश्तराक कम हो गया। इस भी तखसीस यकिलुश्तेराक हुआ, इसलिए क्योंकि तखसीस की वजह से नकेरा का इश्तराक कलील हो जाता है। फतक्रुबु मिनल मारिफती, तो ये नकेरा जो है मारिफा के करीब हो जाता है। मिस्लु कौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला का ये कौल है, वला अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। जी इसके अंदर अब्दुन नकेरा है और मोमिनुन सिफत के जरिए उसमें तखसीस आ गई, तो इसका मुब्तदा बनना सही। ये तखसीस का पहला तरीका है और इसका क्या नाम है? तखसीस बिसिफत। भाई देखिए कहते हैं फइन्नल अब्द मुतनाबिलुन लिल मुमिनी वल काफिरी, इसलिए क्योंकि अब्द का लफ्ज ये शामिल है मोमिन को भी और काफिर को भी। भाई अब्द का लफ्ज बोला जाए यानी गुलाम, ये तो मोमिन गुलाम हो चाहे काफिर हो सब पर सादिक आता है,
तो कहते हैं फइन्नल अब्द मुतनाबिलुन लिल मुमिन वल काफिर, इसलिए क्योंकि अब्द का जो लफ्ज है वो शामिल है मोमिन को भी और काफिर को भी। वहैसु वुसिफा बिल मुमिनी, और चूंकि इसको मौसूफ कर दिया गया बिल मुमिनी, किस लफ्ज के साथ, मोमिन के लफ्ज के साथ, तखस्ससा बिस्सिफती, तो इसने तख्सीस हासिल कर ली सिफत की वजह से, इस अब्द के लफ्ज ने तख्सीस पा ली, तख्सीस हासिल कर ली सिफत की वजह से। फजुइला मुबतदाअन, तो इसको मुबतदा बना दिया गया। वह खैरुन खबरहु, और खैरुन को इसकी खबर बना दिया गया। मैंने बताया था गुज़श्ता सबक में कि जाला दो मफूल चाहता है, जाल तो तीन कासन, मैंने मिट्टी को गिलास बना दिया, मैंने मिट्टी और गारे से क्या बना दिया, गिलास बना दिया। जालतु ये ता फाइल है, और अतीना मफूले अव्वल, और कासन मफूले सानी। फिर जब इसी जाला से फिले मजहूल बनाएंगे तो एक मफूल नायबुल फाइल बन जाएगा और दूसरा उसी तरह मंसूब रहेगा, तवज्जो है, लिहाजा यहां पर भी इसी तरह है। फजुइला मुबतदा अन, जुइला के अंदर हुआ जमीर जो राजे है किसको, लफ्ज आब्द को। फजुइला उसको यानी लफ्ज आब्द को बना दिया गया मुबतदा अन, क्या बनाया गया मुबतदा। तो अब आप कहेंगे कि जुइला तो फेले मजहूल है, फेले मजहूल के लिए ये मफूल आगे मंसूब कैसे आया, वो तो नायबुल फाइल बन जाता है। तो मैंने बताया दो मफूल थे भाई, दो में से एक क्या बन चुका, नायबुल फाइल बन चुका है, लेकिन दूसरा उसी तरह मंसूब रहेगा। फजुइला मुबतदा अन, तो उस आब्द को मुबतदा बना दिया गया। वह खैरुन खबरहू, ये खैरुन का आतफ है जुइला के अंदर जो हुआ जमीर है, तो यह भी जुइला का नायबुल फाइल है। और खबरहू इसका आतफ किस पर है, मुबतदा अन पर, यह भी वो दो मफूल हैं जुइला के भाई, बात समझ में आ रही है। तो खैरुन नायबुल फाइल बन गया और खबरहू उसी तरह मंसूब रहेगा। और तो कहते हैं वह खैरुन खबरहू, और खैरुन को उसकी खबर बना दिया गया। वह मिसलु कौलिका, और जैसे कि आपका यह कौल है, अराजुलुन फिद्दारी अमी मराअतुन, यह तख्सीस का दूसरा तरीका आ गया भाई, तख्सीस का दूसरा तरीका, इसका नाम है तख्सीस बिइल्मिल मुतकल्लिम, तख्सीस बिइल्मिल मुतकल्लिम। यहां इल्मे मुतकल्लिम की वजह से तख्सीस आ गई कि मुतकल्लिम को एक बात का इल्म है भाई। और ये तख्सीस बिइल्मिल मुतकल्लिम कहां आती है, तो याद रखना तख्सीस बिइल्मिल मुतकल्लिम वहां आती है जहां हमज़ा इस्तिफहाम आए मा अमे मुत्तसिला के, जहां क्या आए, हमज़ा इस्तिफहाम मा अमे मुत्तसिला, ये जो अम आ रहा है ना, अराजुलुन फिद्दारी अम इमराअतुन, ये जो अम आया याद रखो, ये अम, ये आगे चलकर साहिब काफिया आपको बतलाएंगे कि ये अम दो किस्म पर है, एक अम को अमे मुत्तसिला कहते हैं, एक अम को अमे मुनकतिया कहते हैं। अमे मुत्तसिला इसके जरिए दो चीजों के दरमियान तायीन के बारे में सवाल किया जाता है, और अमे मुनकतिया देखो इनकता यनकतियों के माने कट जाना, आम मुनकतिया वो होता है जिसके अंदर आम से पहले एक बात की जाती है और आम के बाद दूसरी बात की जाती है, तो दोनों बातें देखो एक दूसरे से मुनकतिया हैं, कटी हुई हैं। आम से पहले एक बात, आम के बाद कोई और बात, यानी पहली बात को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, आगे एक और अलग बात कर दी जाती है, तो उसको कहते हैं आम मुनकतिया। और आम मुत्तसिला यह है जो यहां इबारत में आया, इसके अंदर आम से पहले और आम का माबाद एक दूसरे से कटे हुए नहीं है, एक दूसरे से मुनकतिया नहीं है, बल्कि इसके जरिए दो चीजों के दरमियान तायीन का सवाल किया जाता है, यानी एक ही बात पूछी जाती है, तवज्जो है, इसको क्या कहते हैं, आमे मुत्तसिला। मसलन जैसे यहां आया अर्रजुलुन फिद्दारी अमी मरातुन, क्या आदमी है उस घर में अमी मरातुन या औरत, क्या उस घर में आदमी है या औरत, ये आप सवाल करते हैं, और याद रखो इसके जरिए वही शख्स सवाल करेगा जिसको इतना पता हो कि उस घर में आदमी या औरत में से कोई है, आदमी या औरत में से है, कोई और चीज नहीं है उस घर के अंदर, आदमी या औरत ही है। आप इतना तो उसको पता है कि इन दोनों में से एक है, लेकिन उसको तायीन नहीं, उसको मुतायन तौर पर पता नहीं कि आदमी है या औरत, तो अब वो आपसे सवाल करता है अरजुलुन फिद्दारी अमीम रातुन, क्या उस घर के अंदर आदमी है या औरत। तो अब आप जवाब में नाम या ला नहीं कह सकते। नाम का क्या माना? हां, यानी इस घर में आदमी या औरत ही है। भाई नाम कहने का तो कोई फायदा ही नहीं, इतना तो उसको भी पता है कि आदमी या औरत ही में से एक है, तो आपके नाम ने कोई और फायदा दिया नहीं। ये तो उसको पहले ही पता था कि आदमी या औरत में से एक है, लिहाजा यहां नाम के साथ जवाब नहीं दिया जा सकता या ला के साथ जवाब नहीं दे सकते, बल्कि तायीन करना पड़ेगी। इतना उसको भी पता है इन दो में से एक है, वो सिर्फ तायीन के लिए सवाल कर रहा है कि मुझे मुतायन करके बता दो कि इन दोनों में से कौन है उस घर के अंदर। और नीज ला के साथ भी जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्योंकि अगर आप कहते हैं कि नहीं इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो इस सूरत में तो मुतकल्लिम का इलम गलत हो जाएगा, हालांकि मुतकल्लिम को इलम है कि इन्हीं दो चीजों में से कोई एक चीज इस घर में है भाई। या जैसे दूसरी मिसाल ले लो, अज़ैदुन फिद्दारी अम अमरुन, क्या उस घर में जैद है या अमर है? आप कहते हैं नाम। भाई नाम जवाब देने का फायदा ही कोई नहीं, ये तो उसको पहले भी पता है, वो सिर्फ तायीन चाहता है, ये मुझे बताओ जैद है या अमर, मुझे इतना तो मुझे भी पता है कि इन दो में से एक है, लेकिन कौन सा वाला इस घर के अंदर है मुझे वो तायीन करके बता दो। तो लेकिन यहां जैद और अमर की मिसाल जिक्र नहीं की, बल्कि रजुल और इमरा को जिक्र किया, क्योंकि बात किसकी चल रही है? नकेरा की, जिसको मुब्तदा बनाया जाए तख्सीस की वजह से, और जैद और अमर तो मारिफा है भाई, तो यहां उस नकेरा की बात की जो तख्सीस की वजह से मुब्तदा बन सके। तो अराजुलुन फिद्दारी अमी मरातुन, इसके अंदर रजुलुन नकेरा है और ये मुब्तदा बन रहा है, और आगे अमी मरातुन, इमरा का आतफ भी इसी रजुल पर है भाई, तो यहां तख्सीस आ गई भाई, और तख्सीस किसकी वजह से आई? इल्म मुतकल्लिम की वजह से, कि उसको इतना इल्म है कि इन्हीं दो में से कोई एक चीज है भाई। तो इस तख्सीस का क्या नाम? तख्सीस बिइल्मिल मुतकल्लिम भाई। और यह कहां आती है? जहां हमज़ा इस्तिफ़हाम आए अम मुत्तसिला के साथ भाई। तो कहते हैं वह मिसलु कौली का, और जैसे कि आपका यह कौल है अरजुलुन फिद्दारी अमिमरातुन, क्या कोई आदमी है उस घर में या औरत? फइन्नल मुतकल्लिम बिहादल कलाम यालमु, इसलिए क्योंकि वो शख्स जो मुतकल्लिम है इस कलाम पर, यानी वो शख्स जो ये कलाम करने वाला है, यालमु वो जानता है, अन्ना अहदहुमा फिद्दारी, कि इन दोनों में से कोई एक उस घर में है, फयसअलुल मुखातबा अन तायीनिही, तो वो मुखातब से सवाल करता है अन तायीनिही उसकी तायीन के बारे में कि कौन है उस घर के अंदर इन दो में से। फका अन्नहु काला, तो गोया के उसने यूं कहा अय्युम मिनल अमरैनिल मालूम कौनु अहदिहिमा फिद्दारी काइनुन फीहा। जी ये इबारत समझ लें भाई, ये मुश्किल इबारत है भाई। सबसे पहले याद रखो एक है सिफत बिहालिही और एक है सिफत बिहाले मुतअल्लिकिही। एक है सिफत बिहाली ही और एक है सिफत बिहाली मुतअल्लिकी ही। ये एक दो मिसालें जरा अपने सामने कॉपी पर लिखिए, फिर आपको बात समझ में आएगी भाई। लिखिए भाई, जाअनी रजुलुन आलिमुन, जाअनी रजुलुन आलिमुन। जी अब तरकीब पे जरा नजर रखो, जाआ फेल, नून विकाया, या जमीर मंसूब महल्लन मफूल बिही, रजुलुन मरफू लफजन मौसूफ, मरफू क्यों? कि ये फाइल है जा के लिए, और आलिमुन मरफू लफजन सिगा इसमें फाइल, मरफू क्यों? क्योंकि ये सिफत है, रजुल है मौसूफ और आलिम है उसकी सिफत, और मौसूफ सिफत का इराब एक ही होता है, तो आलिमुन मरफू लफ्जन सीगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, जो किसको राजे? शाबाश, ये जमीर रजुल को राजे है, इसलिए क्योंकि सिफत को मौसूफ से जोड़ते हैं, और ये सिफत जो है शिबे जुमला है, शिबे जुमला, और जिस तरह जुमले को किसी चीज से जोड़ना हो तो रबत जरूरी, इसी तरह शिबे जुमला को भी किसी चीज से जोड़ना हो तो रबत जरूरी है। तो आलिमुन इसमें फाइल जो है वो अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ये फाइल हुआ जाआ के लिए, जाआ फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। जाअनी रजुलुन आलिमुन, आया मेरे पास ऐसा आदमी जो के आलिम है। या यूं कहें मेरे पास आलिम आदमी आया, मेरे पास आलिम आदमी आया। आप जरा लफ्जों पे जरा गौर करो, रजुलुन है मौसूफ और आलिमुन है उसकी सिफत। और मुझे बताइए ये आलिम होने का माना रजुल में है या किसी और चीज में? रजुल ही में है। तो इसको कहते हैं सिफत बिहाली ही। ये लफ्ज लिख लो भाई, असिफतु बिहाली ही, ये लफ्ज लिखे जरा अपने सामने। असिफतु गोलता है भाई, असिफतु बिहाली ही, इसको कहते हैं सिफत बिहाली ही। और ये हा जमीर राजे है मौसूफ को, आई असिफतु बिहालिल मौसूफी, यानी वो सिफत जो अपने मौसूफ की हालत बयान करती है। रजुलुन आलिमुन, रजुलुन मौसूफ था और आलिमुन उसकी सिफत है। और ये आलिम होने का माना किसके अंदर है? रजुल के अंदर है। तो ये आलिम होना अपने मौसूफ की हालत बयान कर रहा है। ये लफ्ज आलिम किसकी हालत बयान कर रहा है? रजुल की, के रजुल आलिम है, कोई और आलिम नहीं। इसको क्या कहते हैं? सिफत बिहाली ही। और यह हाजमीर किसको राजे? मौसूफ को, आई सिफत बिहालिल मौसूफी, यानी वो सिफत जो अपने मौसूफ की हालत बयान करे। इसी तरह दूसरी मिसाल लिखिए, जैदुन आलिमुन, जैदुन आलिमुन। तरकीब कीजिए, जैदुन मरफू लफजान मुब्तदा, आलिमुन मरफू लफजान सीगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल जो किसको राजे? जैद को, क्योंकि खबर को मुब्तदा से जोड़ते हैं। तो इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर ये खबर जैद के लिए, और मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अब इसमें भी देखो, ये आलिमुन लफ्जों में खबर किसकी? जैदुन आलिमुन, ये आलिमुन लफ्जों में खबर किसकी? जैद की। और माना में भी ये जैद की खबर है। ये आलिम होने की सिफत किसमें पाई जा रही है? जैद में पाई जा रही है कि जैद आलिम है। तो याद रखो ये भी सिफत बिहाली ही है। ये जो जैदुन आलिमुन में आलिमुन आया, ये भी क्या है? सिफत बिहाली ही है। आप कहेंगे ये तो सिफत नहीं है, ये तो खबर है। तो याद रखना भाई, ये खबर भी सिफत ही होती है, ये खबर भी सिफत ही होती है। भाई पिछला जुमला क्या आया था? जानी रजुलुन आलिमुन, मेरे पास ऐसा आदमी आया जो कि आलिम है। तो आलिम होने का माना किस में था? उसी रजुल में था। तो वो सिफत बिहाली ही है। इसी तरह जब मैंने कहा जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है, इससे भी क्या पता चला कि आलिम होने का माना किस में है? जैद में है। तो ये जो खबर होती है ये भी दरअसल सिफत होती है, ये भी ये दरअसल सिफत है। हां, चूंकि आपको पता नहीं था इसलिए मैं खबर की सूरत में लाया, जब आपको पता लग गया अब यह सिफत बन गई। तो हर सिफत कबलल इलम खबर होगी और बादल इलम सिफत बन जाएगी। आपको पता नहीं था कि जैद आलिम है, तो ये कबलल इलम, अब मैं जैदुन आलिमुन, मैं आलिमुन को खबर की सूरत में लाऊंगा, क्योंकि आपको इलम नहीं है, आपको खबर नहीं है। और जब आपको एक दफा पता चल गया अब ये सिफत बन जाएगी। अब मैं आपसे कहूंगा जानी जैदुन अल आलिम, मेरे पास वो जैद आया जो आलिम था, जैदुन मौसूफ अल आलिम उसकी सिफत। तो ये आलिम जब तक आपको पता नहीं था, जब मैंने जिक्र किया तो किस सूरत में जिक्र किया? खबर की सूरत में। और जब आपको पता लग गया अब वो क्या बन गई? सिफत बन गई। अब मैं उसको सिफत के तौर पर जिक्र करूंगा कि जानी जैदुन अल आलिम, वो जैद जो आलिम है। तो हासिल कलाम क्या कि खबर जो होती है वो भी दरअसल क्या होती है? सिफत। हां, वो कबलल इलम खबर है वही सिफत, और बादल इलम वो क्या है? सिफत है भाई। तो ये भी सिफत बिहाली ही है। जैदुन आलिमुन में ये जो आलिमुन है ये भी क्या है? सिफत बिहाली ही है, यानी ये अपने मौसूफ की हालत बयान कर रही है, यानी मुब्तदा की। और कभी कभार सिफत जो है बिहाली मुतअल्लिकी ही होती है, जैसे उसकी मिसाल लिखिए भाई, लिखिए भाई, जानी रजुलुन आलिमुन अबूहू, जानी रजुलुन आलिमुन अबूहू। तरकीब कीजिए, जाआ फेल नून विकाया या जमीर منصوب محلن مفعول به، رجلن مرفوع لفظن موصوف، عالمن مرفوع لفظن صيغه اسم فاعل. یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صفت ہے رجل کی. جی، تو عالم مرفوع لفظن صیغہ اسم فاعل. آگے یہ ابوہ آگے کیا بنے گا؟ ہاں، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنیں گے؟ یہ عالم کے لیے فاعل بنیں گے. جیسے فعل کے لیے فاعل کبھی اس میں ظاہر آتا ہے کبھی ضمیر، صفت کے صیغے کے لیے بھی فاعل کبھی اس میں ظاہر آتا ہے اور کبھی ضمیر. تو یہ ابوہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس میں ظاہر فاعل بن گیا عالم کے لیے. اب عالم کے اندر کوئی ضمیر نہیں، تو عالم مرفوع لفظن صیغہ اس میں فاعل. ابوہ میں ابو مرفوع لفظن مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور یہ مضاف ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہے. جس اسم کے ساتھ یہ ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ. ہاں، ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، اور یہ کس کو راجع؟ ہاں ضمیر رجل کو راجع ہے، کیونکہ ربط دینا ہے، ربط دینا، اور تو کوئی ضمیر ہے نہیں. اور عالم ابوہ سارے نے صفت بننا ہے کس کی؟ رجل کی. اور عالم کے اندر تو ہوا ضمیر تھی نہیں، تو اب ربط تو ابھی بھی نہیں آیا، تو اب یہ ہاں ضمیر رجل کو راجع ہے. جی، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا عالم کے لیے. عالم صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر فاعل ہوا بھائی. اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جاءنی رجل عالم ابوہ، ترجمہ سنو، آیا میرے پاس ایسا آدمی عالم ابوہ، کہ عالم ہے اس کا ابو، کہ عالم ہے اس کا ابو. اب دیکھو یہ عالم صفت کس کی؟ لفظوں میں صفت کس کی؟ رجل کی. رجل موصوف ہے اور عالم ابوہ سارا اس کی صفت. تو عالم لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی، لیکن معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں یہ عالم ہونے کا معنی رجل میں پایا جا رہا ہے یا اس کے ابو میں؟ اس کے ابو میں. تو یہ صفت بحالی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ صفت بحالی متعلقی ہی ہے. جی، یہ لفظ بھی لکھیں آپ اس کے یہاں پر، الصفت بحالی متعلقی ہی، الصفت بحال متعلقه. اور یہ متعلق ہی کی ہا ضمیر راجع ہے موصوف کو. الصفت بحال متعلقه، وہ صفت جو اپنے موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرے. توجہ ہے، صفت بحال ہی کا کیا معنی تھا؟ وہ صفت جو اپنے موصوف کی حالت بیان کرے. اور صفت بحال متعلق ہی کیا معنی؟ وہ صفت جو اپنے موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرے. یہاں پر بھی عالم لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ رجل کی حالت نہیں بیان کر رہی، بلکہ رجل کے متعلق یعنی اس کے ابو کی حالت بیان کر رہی ہے. اور آدمی کا باپ اس کا متعلق ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے بھائی، وہ اس کا باپ ہے بھائی. تو صفت کتنی قسم پر ہو گئی؟ ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحال متعلق ہی. صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو لفظوں میں جس کی صفت ہو معنی میں بھی اسی کی صفت ہو. پہلی مثال پہ ذرا نظر رکھو، جانی رجل عالم، جانی رجل عالم. عالم لفظوں میں کس کی صفت؟ رجل کی، اور معنی میں بھی رجل کی صفت ہے، یہ عالم ہونے کا معنی اسی رجل میں پایا جا رہا ہے. اور دوسری صفت پہ نظر رکھو، جانی رجل عالم ابوہ، یہ عالم لفظوں میں صفت کس کی؟ رجل کی، لیکن معنی میں صفت کس کی ہے؟ ابو الرجل کی، اس آدمی کے باپ کی صفت ہے. تو صفت گویا دو قسم پر ہو گئی، ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلقی ہی. یہ تو تھا صفت میں، اور اسی طرح میں نے بتایا خبر بھی صفت کے درجے میں ہے، لہذا وہاں بھی کیا مثال بن جائے گی؟ زیدن عالم ابوہ، وہاں بھی ابوہ لے آئے. تو اب عالم لفظوں میں خبر کس کی؟ زید عالم ابوہ، یہ عالم لفظوں میں خبر کس کی؟ زید کی. یعنی لفظوں میں یہ صفت بن رہی ہے زید کی، لیکن معنی میں صفت کس کی ہے؟ زید کے ابو کی۔ ایک دو مثالیں اور لکھ لیں پھر بات آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ زید عالم بنوہ، زید عالم بنوہ، بنوہ یہ اصل میں تھا بنون بھائی، یہ جمع ہے ابنون کی، ابنون کی جمع کیا بنون، اور پھر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، ہاں ضمیر کی طرف اضافت ہوئی نا بنوہ، تو بنون کا کیا معنی بیٹے، تو زید عالم بنوہ، زید کہ عالم ہیں، بنوہ اس کے بیٹے، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو زید عالم بنوہ، اس کے اندر جو عالم آیا یہ لفظوں میں خبر یعنی لفظوں میں صفت ہے کس کی، زید کی، اور معنی میں یہ صفت ہے کس کی، بنوہ یعنی زید کے بیٹوں کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں بنوہ جمع ہے، جمع ہے لیکن عالم مفرد ہے، کیوں، ہاں شاباش، کیونکہ جب اس میں ظاہر فاعل ہو تو فعل اور صفت کے صیغے کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں، تو جب یہ صفت بحال متعلق ہی ہوگی تو پھر یہ ہمیشہ مفرد رہے گی، یہ صفت بحال تو جب بھی ہوگی یہ مفرد رہے گی، کیونکہ آگے اس کا فاعل اس میں ظاہر آئے گا، اور اس میں ظاہر تبھی فاعل بن سکتا ہے جب صفت کا صیغہ مفرد ہو۔ مثلا اور مثال بناؤ، الزیدانی عالم بنوہما، الزیدانی عالم بنوہما، دیکھو الزیدانی یہ ہے مبتدا اور عالم یہ کیا ہے اس کی خبر، اور بنوہما یہ کیا ہے، بنوہما یہ فاعل ہے کس کے لیے، عالم کے لیے، الزیدانی وہ جو دو زید ہیں، عالم بنوہما ان دونوں کے بیٹے عالم ہیں۔ اب یہاں بنوہما دیکھو جمع ہے اور عالم کو مفرد لائے، کیوں مفرد لائے، کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل یا صفت کے صیغے کو مفرد رکھتے ہیں۔ نیز آپ غور کریں، الزیدانی مبتدا ہے تثنیہ، اور عالم یہ اس کی خبر ہے لیکن یہ مفرد ہے، یہ مفرد ہے، تو اب آپ یہ اعتراض نہ کریں کہ تثنیہ کے لیے تو خبر تثنیہ آنی چاہیے، وجہ یہ کہ یہ صفت بحالی ہی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، صفت بحال متعلق ہی، اور وہ ہمیشہ مفرد رہتی ہے کیونکہ آگے اس کا فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر تب ہی اس کے لیے فاعل بنے گا جب صفت کا صیغہ مفرد ہو۔ تو لہذا یہ جو صفت بحال متعلق ہی ہے یہ اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ مفرد رہتی ہے، موصوف چاہے مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صفت بحال ہی ہمیشہ کیا رہے گی، مفرد رہے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور مثال لکھیے، زید عالمت امہ، زید عالمت امہ، جی ترکیب کیا ہوگی، زید مرفوع لفظان مبتدا، عالمت مرفوع لفظان صیغہ اس میں فاعل، امہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس عالمت کا فاعل، اور امہ کی ہا ضمیر کس کو راجع، زید کو، اس کے ذریعے ربط آ گیا خبر کا مبتدا سے، خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدا سے، تو امہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، عالمتن صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، زید عالمتن امہ، ترجمہ کیا، زید کہ عالمہ ہے اس کی ماں، زید کے عالمہ ہے اس کی ماں، یعنی زید کی ماں عالمہ ہے۔ اب دیکھو، اب آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے کہ زید تو ہے مذکر اور عالمتن اس کی خبر تو مؤنث ہے، وجہ یہ کہ یہ صفت بحال متعلق ہی ہے اور یہ اپنے فاعل کے مطابق مذکر مؤنث آتی ہے، فاعل اگر مذکر ہو ابوہ ہو تو عالمن لائیں گے، اور فاعل مؤنث یعنی امہ ہے تو عالمتن مؤنث لائے۔ تو حاصل ہے کلام یہ، صفت بحال متعلق ہی جو ہے وہ ہمیشہ مفرد رہے گی، چاہے اس کا موصوف مفرد ہو تثنیہ ہو یا جمع،
सिफत बिहाले मुतालिक ही हमेशा मुफरत रहेगी क्योंकि आगे उसका फाइल इसमें जाहिर आ रहा है और फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल या सिफत के सिगे को हमेशा मुफरत रखते हैं। और नीज सिफत बिहाल मुतालिक ही वो मुफरत या मुजक्कर आएगी अपने फाइल के एतबार से न कि अपने मौसूफ के एतबार से। मौसूफ मुजक्कर हो और फाइल मुअन्नस हो तो सिफत बिहाल मुतालिक ही को अपने फाइल के मुताबिक मुअन्नस लाएंगे। जैसे इस मिसाल में जैदुन आलिमतुन उम्मुहु, या आलिमतुन खबर किसकी? जैद की, लेकिन इसका फाइल क्या है? उम्मुहु है, वो मुअन्नस है तो आलिमतुन मुअन्नस लेकर आए। तो मालूम हुआ सिफत बिहाल मुतालिक ही यह हमेशा क्या रहेगी? मुफरद रहेगी, ये अपने मौसूफ के मुताबिक तस्निया या जमा नहीं आएगी। और नीज ये अपने फाइल के मुताबिक मुजक्कर या मुअन्नस आएगी। अगर इसका फाइल मुजक्कर हुआ तो यह सिफत मुजक्कर होगी, अगर इसका फाइल मुअन्नस हुआ तो यह सिफत मुअन्नस होगी। हां, दो चीजों के अंदर यह अपने मौसूफ के मुताबिक होगी, दो चीजों में। एक तारीफ और तनकीर में, मौसूफ अगर मारिफा हो तो सिफत भी हमेशा क्या होती है? मारिफा। और दूसरा एराब के अंदर, मौसूफ पर जो एराब होता है वही एराब किस पर होता है? सिफत। तवज्जो है। जैदुन आलिमतुन उम्मुहु, ये तो हमने मुब्तदा खबर की मिसाल की। कौन सी मिसाल की? मुब्तदा खबर वाली, लेकिन है ये भी सिफत ही। मौसूफ सिफत, बाकायदा मौसूफ सिफत जरा ले आओ। जानी रजुलुन आलिमतुन उम्मुहु, जानी रजुलुन आलिमतुन उम्मुहु, रजुलुन मौसूफ और आलिमतुन उम्मुहु उसकी सिफत। अब देखो दोनों का एराब एक है, रजुलुन भी मरफू और आलिमतुन भी मरफू। नीस नीस रजुलुन नकेरा और तो आलिमतुन भी नकेरा है। देखो रजुलुन आलिमतुन उम्मुहु ये सिफत भी हाली मुतालिक ही है, ये अपने मौसूफ के साथ मुताबिक होती है दो चीजों में, एक एराब में और दूसरा तारीफ और तनकीर में। और दो चीजों के अंदर ये अपने मौसूफ के मुताबिक नहीं होती। कौन सी दो चीजें? एक मुफरत तस्निया और जमा होने में, ये अपने मौसूफ के मुताबिक नहीं होगी बल्कि हमेशा मुफरत रहेगी क्योंकि इसका फाइल आगे इसमें जाहिर आ रहा है। और नीज ये मुजक्कर मुअन्नस होने में भी अपने मौसूफ के मुताबिक नहीं रहेगी बल्कि अपने फाइल के मुताबिक आएगी। ये थी सिफत बिहाल मुतालिक ही, जबकि एक होती है सिफत बिहाल ही, वो तमाम चीजों में अपने मौसूफ के मुताबिक होती है। जानी रजुलुन आलिमुन, रजुलुन पर रफा तो आलिमुन पर भी रफा, रजुलुन नकिरा तो आलिमुन भी नकिरा, रजुलुन मुफरत तो आलिमुन भी मुफरत, और रजुलुन मुजक्कर तो आलिमुन भी, तो यह सिफत मुजक्कर होगी। फिर दोहराएं सिफत बिहाल ही, सिफत बिहाल ही कितनी चीजों में अपने मौसूफ के मुताबिक होती है? चार चीजों में, एराब में, तारीफ और तनकीर में, मुफरत तस्निया और जमा होने में, और मुजक्कर मुअन्नस होने में। चारों चीजों में सिफत बिहाल ही अपने मौसूफ के मुताबिक आएगी। और एक सिफत बिहाल मुतालिक ही है, वो दो चीजों में अपने मौसूफ के मुताबिक होगी और दो चीजों में मुताबिक नहीं। कौन सी दो चीजों में मुताबिक होगी? एराब में और तारीफ और तनकीर में। और किन दो चीजों में मुताबिक नहीं होगी? इफराद तस्निया और जमा में मुताबिक नहीं होगी बल्कि ये हमेशा मुफरद रहेगी। और नीज तस्किर और तानीस में भी ये अपने मौसूफ के मुताबिक नहीं बल्कि अपने फाइल के मुताबिक होगी। बात समझ में आ गई। अब आइए इबारत पर भाई, देखिए भाई, फइन्नल मुतकल्लिम बिहादल कलाम यालम, इसलिए क्योंकि ये कलाम करने वाला मुतकल्लिम जानता है कि अन्न अहदहुमा फिद्दारी, के इन दोनों में से एक उस घर में है, फयसअलुल मुखातब अन तायिनिही, तो वो मुखातब से पूछता है उस एक की तायीन के बारे में, फकअन्नहु काला, तो गोया के मुतकल्लिम ने यूं कहा, अय्युम मिनल अमरैनिल मालूम कौनु अहदिहिमा फिद्दारी काइनुन फीहा। मैंने बताया था ये इबारत मुश्किल है भाई, इतनी लंबी तकरीर की ये समझाने के लिए। देखो अय्युम मिनल अमरैनी, अल अमरैनी है मौसूफ, अल अमरैनी मौसूफ, और अल मालूम ये उसकी सिफत है। अल अमरैनी पर मीन दाखिल है, मजरूर है, तो अल मालूम ये भी क्या है? मजरूर। और याद रखो ये अल मालूम ये सिफत बिहाल मुतालिक ही है और इसकी मुताबकत होती है अपने मौसूफ के साथ दो चीजों में, एक एराब में,
तो देखो अल अमरैनी मजरूर है तो अल मालूमी भी क्या है मजरूर, और नीस मुताबकत होती है तारीफ और तनकीर में, अल अमरैन मारिफा तो अल मालूम भी क्या है मारिफा, और दो चीजों में मुताबकत नहीं होती एक इफराद तस्निया और जमा में, अल अमरैन मौसूफ है तस्निया लेकिन अल मालूम हमेशा जो सिफत भी हाल मुतअल्लिक ही है वो मुफरद रहेगा, और नीज तस्कीर और तानीस में भी मुताबकत नहीं होती बल्कि आगे आने वाले इसमें जाहिर के मुताबिक तस्कीर और तानीस होगी, और अल मालूम का फाइल आगे आ रहा है कौनु अहदिहिमा, ये कौन मस्तर इसका फाइल है, और कौन तो मुजक्कर है इसलिए अल मालूम ये भी मुजक्कर है भाई, अगर ये मुअन्नस फाइल होता तो ये अल मालूम का लफ्ज भी क्या होता मुअन्नस होता भाई। अब देखिए فكأنه قال گویا کہ متکلم نے یہ کہا ایم من الامرین کہ ان دو چیزوں میں سے کون سی ہے ان دو چیزوں میں سے کون سی ہے وہ دو چیزیں المعلوم کہ یہ بات معلوم ہے کون احدہما فی الدار ان دونوں میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے کیا چیز معلوم ہے कौन अहदिहिमा फिदार ये फाइल है मालूम है कौन अहदिहिमा फिदारी उन दो में से एक का उस घर में होना मालूम है और काइनुन फीहा ऐ साबितुन फीहा काइनुन किस माना में है साबितुन वही अफाल अम्मा में से है भाई काना यकून से काइनुन फीहा जो साबित है फीहा उस घर में। अब जरा देखो फिर इबारत देखो فكأنه قال گویا کہ متکلم نے یوں کہا ہے ایم من الامرین ان دو چیزوں میں سے کون سی ہے درمیان کی عبارت چھوڑ دیں کائن فیہا ای ثابت فیہا یہ خبر ہے یہ خبر ہے درمیان میں المعلوم کون احدہما فی الدار ذرا اس عبارت کو نکال دیں ایم من الامرین کائن فیہا ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز ہے کائن فیہا ای ثابت فیہا اس گھر میں ثابت ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز اس گھر میں ثابت ہے ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز اس گھر میں ثابت ہے بھائی ان دو چیزوں میں سے کون سی یہ دو چیزیں کہتے ہیں المعلوم کون احدہما فی الدار کہ جن میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے یہ دو چیزیں کہ جن میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے ان میں سے کون سی چیز کائن فیہا اس گھر میں موجود ہے اس گھر میں ثابت ہے بات سمجھ میں آ گئی عبارت سمجھ میں آ گئی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تخصیص جو آئی ہے وہ علم متکلم کی وجہ سے آئی ہے متکلم جن دو امروں کا سوال کر رہا ہے ان دو میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے لیکن وہ کون سا ہے صرف تعین نہیں ہے کہ ہے ان دونوں میں سے ایک ہی لیکن تعین نہیں ہے ذرا آپ مجھے متعین کر کے بتا دیں کون سا والا ہے بھائی فَكَأَنَّهُ قَالَ تو گویا کہ متکلم نے یہ کہا اَيُّم مِنَ الْأَمْرَيْنِ کہ وہ جو دو امر ہیں وہ جو دو چیزیں ہیں المعلوم کون احدہما فی الدار کہ معلوم ہے ان دونوں میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا وہ دو چیزیں کہ ان دونوں میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز جو ہے کائن فیہا ای ثابت فیہا وہ اس گھر میں ثابت ہے ای موجود فیہا اس گھر میں موجود ہے فکل واحد منہما تخصص بهذه الصفت تو ان میں سے ہر ایک جو ہے اس نے تخصیص پا لی اس نے تخصیص حاصل کر لی بهذه الصفت اس صفت کی وجہ سے دونوں میں سے ہر ایک نے تخصیص حاصل کر لی دونوں میں سے کیا مانا بھائی آیا نا الرجل فی الدار ام امرأة رجل ہے مبتدا اور ام امرأة یہ امرأة کا اسی پر عطف ہے بھائی اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے معطوف علیہ تو مال تو ان دونوں میں سے ہر ایک میں تخصیص آ گئی اس صفت کی وجہ سے کون سی صفت کہ اس گھر میں ان دونوں میں سے ایک کا ہونا معلوم ہے یا یہ رجل یا یہ امرأة ان دونوں میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے یا تو یہ ہے یا یہ ہے تو گھر میں ہونا معلوم دیکھو صفت آ گئی یا نہیں رجل یا امرأة ان میں سے ایک کا اس گھر میں ہونا معلوم ہے تو یہ معلوم ہونا ان کی صفت ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی तो कहते हैं फकुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा तखस्सस बिहादिहि सिफति, तो इन दोनों में से हर एक जो है उसने तख्सीस हासिल कर ली इस सिफत की वजह से। कौन सी सिफत? कि इनका उस घर में होना मालूम है। फजुइला रजुलुन मुब्तदाअन, तो रजुल को मुब्तदा बना दिया गया। वफिद्दारी खबरहू, और फिद्दार को उसकी खबर बना दिया गया। बस भाई हासिल कलाम ये कि आज हमने तख्सीस के दो तरीके पढ़े भाई। तख्सीस के पहले तरीके का क्या नाम? तख्सीस बिसिफत, के यानी नकेरा की सिफत लाकर उसमें तख्सीस पैदा कर दी जाए, और सिफत लाने से इश्तराक कम हो जाता है। और इसी तरह तख्सीस का दूसरा तरीका क्या है? तख्सीस बिइल्मिल मुतकल्लिम, और ये तख्सीस बिइल्मिल मुतकल्लिम कहां आती है? जहां हमज़ा इस्तिफ़हाम आए किसके साथ? आमे मुत्तसिला के साथ। और यहां तख्सीस आती है इल्मे मुतकल्लिम की वजह से। भाई किस तरह इल्मे मुतकल्लिम की वजह से तख्सीस आई? कि मुतकल्लिम को यह इल्म होता है कि इन ही दो चीजों में से कोई एक उस घर के अंदर है। अब वो इस सवाल के जरिए सिर्फ तायीन को तलब करता है, लिहाजा इस सवाल का जवाब नाम या ला के साथ नहीं दिया जा सकता, बल्कि तायीन के साथ ही जवाब देना पड़ेगा। इस पर एक इश्काल होता है कि ये तो तायीन मुतकल्लिम के नजदीक है, हालांकि मुतकल्लिम के नजदीक तायीन मोतबर नहीं। मैं जो भी कलाम करूंगा उसका दारोमदार सुनने वाले पर है कि वो इसका क्या माना समझता है। तो मुतकल्लिम के नजदीक तायीन हो, हालांकि तायीन तो किसके नजदीक होनी चाहिए? मुखातब के नजदीक तायीन हो, फिर जो है इसका मुब्तदा बनना सही। तो जवाब ये कि मुखातब को भी इस तायीन का इलम है, वो जानता है कि ये मुतकल्लिम आम के जरिए सवाल कर रहा है, मालूम हुआ इसको इतना इलम है कि इन्हीं दो चीजों में से कोई एक उस घर में है, अब वो सिर्फ तायीन को तलब कर रहा है। तो जिस तरह मुतकल्लिम के नजदीक यहां तख्सीस है, इसी तरह मुखातब भी जानता है कि मुतकल्लिम को इस बात का इलम है, तो उसके नजदीक भी इसमें तख्सीस है भाई। इसीलिए ये मुतकल्लिम आम के जरिए सवाल कर रहा है, मुखातब इस बात को जानता है भाई। बात समझ में आ गई, हल हो गया सारा। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।